ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो कल भगवान कृष्ण मथुरा के राज कारागृह में प्रकट होकर के गोकुल आ चुके हैं और गोकुल में उनका जन्मोत्सव हो चुका है। उसके बाद में भगवान की बाल्य चपल सुलभ लीलाएं एक से बाद एक, भगवान के लिए घुटने पर चलना, फिर धीरे धीरे खड़े होना, फिर चलना, विविध लीलाएं। जब भगवान ने करवट भी नहीं बदले थे, सठी पूजन के दिन भी और असुर मारण लीला शुरू हो गया था। सर्वप्रथम भगवान के पास असुर के रूप में आई थी पुतना, एक स्त्री। भगवान जब शुरू करते हैं ओपनिंग असुरवध, पता नहीं, भगवान राम के चक्र में भी वही था। भगवान के राम भी जो ओपनिंग किए वो भी तीन अक्षर वाली एक स्त्री थी, उनका भी तीन अक्षर था, उनका भी तीन अक्षर है। कौन था वो? नहीं, ताड़का, तीन अक्षर वाले थे ना, ताड़का और पुतना, लगभग वही। और लेकिन भगवान ने उनको, आपने बल प्रयोग करके भगवान राम ने ताड़का बद्ध की। पुतना को तो भगवान ने केवल छह दिन का थे, वो तो छह दिन का शिशु, अब अंदाज लगा सकते हैं। कोई शिशु पैदा हुआ केवल छठा दिन ही, और कैसे उनको मारने के लिए पुतना आई? पुतना के लिए सुखदेव गोस्वामी दो विशेषण देते हैं। पुतना का जो अनुभव थी, जो उनका अभिज्ञता थी, जो उनका विशेषता थी, उसको बताने के लिए बोलते हैं, पुतना बाल घातिनी, बालकों को मारने में बहुत ही सिद्धहस्त था, हमेशा बच्चों को मारना चाहता था। क्यों बच्चे को मारना था? क्योंकि रुधिरासनी, असन माने भोजन। अभी तक आप सुने होंगे, कई ऐसे बाबाजी माताजी देखे होंगे जो नियम करके अन्न नहीं खाते होंगे, फलाहारी बाबा हैं, दुग्धहारी बाबा हैं, जलाहारी बाबा हैं, लेकिन अभी तक ऐसे बाबा देखे नहीं होंगे, रक्ताहारी बाबा देखे कोई? रुधिर मतलब रक्त, असन मतलब भोजन जिसका है। पुतना जी जो माताजी थी वो कैसी थी? अन्न भरना फल फल नहीं खाती थी, वो केवल रक्त खाती थी, रुधिरासनी। किसका रक्त खाती थी? न बाल घातिनी, बच्चों के रक्त खाती थी बस। और कंस ने उनको प्रोजेक्ट दे रखा था, ओ किसी का घर में बच्चे पैदा हुए और मंगल वाद्य सुना तो वहीं पहुंच जाएगी। खेचरी आकाश में उड़ करके जाती थी, विभिन्न प्रकार चिड़िया बन करके, और पकड़ करके मरोड़ करके ब्लड पीकर फेंक करके लाश को आ जाती थी। गोकुल में तो भगवान का उत्सव जो हुआ, बड़े भव्य उत्सव हुआ। मथुरा तो गोकुल ज्यादा दूर थोड़ी है, उनको बाजा नाच सुनाई पड़ा, वो तो सहन नहीं कर पाई। अब गोकुल जाने के लिए प्रयास की, लेकिन उनका जोग काम नहीं की, जोग सिद्धि, ऊपर में उड़कर नहीं जा पाई। पैदल में चलकर जाने का था, पैदल में जाएगा तो जानते हैं सब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, तैनात छोड़ेंगे नहीं। तो इससे बुद्धि रची, आपने आपको ऐसे मेकअप की कि यहां तक कि भगवान के माँ साक्षात देवी यशोदा, बलराम की माता रोहिणी देवी भी उनको देख करके समझ नहीं पाई ये ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। वो तो ये समझे कि साक्षात भगवती लक्ष्मी वैकुंठ से आई है हमारे बच्चा को आशीर्वाद देने के लिए, ऐसे मेकअप की थी हूबहू लक्ष्मी जैसे। अब उनको देखकर जब रानी माता ने उनको सम्मान करते हैं, तो बाकी सिक्योरिटी गार्ड वो सब तो पहले से रास्ता छोड़ देंगे, आइए आइए माता जी, लक्ष्मी माता आ रहे हैं ब्रजपुर में। और उस दिन नंद बाबा और जितने बड़े बड़े गोप सो थे नहीं, वो तो गए थे मथुरा टैक्स देने के लिए, जमा करने गए थे, वो थे नहीं उस समय। भाई आकर के सीधा नंद भवन में घुस गई। अब आकर के घुस करके देखा कृष्ण तब छह दिन के थे, पलने पर थे, सो रहे थे। देख करके उनका जो प्रोजेक्ट था, मता था ना क्या था, मारने के लिए चाहता था, लेकिन इसे तो मार नहीं सकती, तो बहुत बड़ी उपाय की थी। मां बन करके छोटे स्तन्यपायी शिशु उनको दूध पिलाएगी अपने स्तन से, और दूध में महाहलाहल जहर कोटिंग करके आई थी। इतनी बड़ी खतरनाक विचार थी उनका मन में। आकर के उनको डांटी जसोदा को, रोहिणी को, बोले आप लोग क्या है, बच्चा का पेट पिचक चुका है, दूध नहीं है आपके पास, दूध नहीं पिलाते उनको, रो रहा है। वो लोग हक्का बक्का हो गए, पता नहीं, वो तो एक्सपर्ट होंगे शायद, हमारा तो पहली बार बच्चा हुआ है, वो एक्सपर्ट होंगे, उनको सब पता है शायद सिम्टम, तो सब डर गए। तुरंत उनके हाथ से दे दिए उनको, आप लीजिए। वो लेकर के तुरंत वहीं उनके सामने भगवान ने एक नजर देखे उनको, वो भी एक नजर देखा, भगवान आंख बंद कर दिए, तुरंत आंख बंद कर दिए। क्यों, कोई सोचेंगे भगवान डर गए उनको देख करके, अच्छा रूप बनाई थी लक्ष्मी जैसा। कई कारण बताते हैं, भगवान आंख बंद के बोले पहले ओपनिंग बैटिंग में एक स्त्री की बद्ध करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है शुरुआत, इसलिए आग बंद कर देते हैं, चलो देखेंगे नहीं उसको। और पुतना जैसा, बाहर के रूप जैसा, मां जैसा बनाई थी, अंदर में जो विचार था इतने कुत्सित विचार थी, उसको देख करके कितने कुट कपट है, बाहर एक अंदर एक, उसको देख कर भगवान ने बोले आंख बंद कर देना उचित। असली बात तो यह है कि भगवान अगर आंख खोले रखते और पुतना की अगर दृष्टि उनके ऊपर पड़ती, पुतना की पुतनात्व खत्म हो जाती, तो इसलिए वो लीला नहीं बन पाती फिर, तो इसलिए क्लोज कर दिया, आंख बंद कर दी। तो उन्होंने ले लिया अपने हाथ में, लेकर उनके साथ में डांटते डांटते फटाफट दूध पिलाने लगे, अपने आप स्तन दिया उनके मुख से, भगवान छोटे बच्चे हैं, दूध पीना उनका स्वभाव था, दूध पीने लगे, लेकिन दूध नहीं पिए उन्होंने, स्तन के माध्यम से अपना प्राण पी लिए उनकी। वो तो जैसे मुंह लगाए भगवान ने, तुरंत यंत्रणा छटपट होने लगी, मुंच मुंच चिल्लाने लगे, छोड़ छोड़ मुझे। भगवान के स्वभाव है, वो किसके पास जाते नहीं, कोई उनके पास एक बार जाता है उनको पकड़ता है फिर उनको छोड़ना नहीं आता, वो खुद नहीं पकड़ते। जब आप एक बार गए अब वो पकड़ लिए फिर छोड़ेंगे नहीं, उतना चिल्लाया छोड़ो छोड़ो नहीं छोड़ते। तो आपने बल प्रयोग करके उनको छुड़ाना चाहती थी लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं, जब जोर से खींचने लगी लगा कि उनका छाती ही उखड़ जाएगी। बाप रे बाप, इतनी यंत्रणा तो भागा बाहर, बाहर में आया तो उनका असली स्वरूप प्रकट हो गया। अब देवी माँ का रूप कहाँ गया, अब महा राक्षसी पुतना की अपनी रूप प्रकट हो गया, दौड़ा चिल्लाते हुए ऐसे करके पुतना को मारे भगवान ने। तो एक एक करके कंस ने पुतना से शुरू करके एवरी डे प्रतिदिन चुने चुने महाबलशाली पराक्रमी असुरों को भेजता था। उनको जब से पता चल गया कि नंद को वहां मेरा काल है तो भेजता था मारने के लिए, लेकिन होता ही कि सारे असुर आते तो थे लेकिन रिटर्न टिकट नहीं करते थे, वन वे टिकट में आते थे। हाँ, किसी का रिटर्न नहीं हुआ, सबका वन वे। अरे आकर समर जाते थे लेकिन कम से कम डेड बॉडी तो वापस जाए, वो भी नहीं जाता था। उनके बंधु वर्ग के लोग दाह संस्कार करने लेके बॉडी भी नहीं जाता था, केवल मैसेज जाता था कि वो गए, मैसेज भर जाता था, सबका ही हाल हुआ। तो बात भी सत्य है, भगवान ने भगवत गीता में घोषणा किए हैं कि मेरा धाम के इसे विलक्षण प्रभाव है। क्या है, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। मेरा धाम ऐसे परम धाम है, वहां जो जाते हैं फिर वापस नहीं आते हैं। तो चाहे असुर हो कोई भी, वापस कैसे आएगा, हो गए वही नो रिटर्न। तो कंस का जितने असुर चुने चुने सब ऐसे गए, एक एक करके मरते गए। कंस तंग हो चुका था और धेनुकासुर को वध होने के बाद में तो उन्हें बड़े विचार में था। ऐसे कई कई पुराण में उल्लेख है कि कंस ने कालिया के साथ फ्रेंडशिप भी किया था, उनको भी अपंड किया था, लेकिन भागवत पुराण में तो ऐसा वर्णन नहीं है। भागवत पुराण में ऐसे वर्णन है कि वृंदावन के दामोदर लीला का वर्णन करने के बाद कार्तिक बीत गया, मतलब ठंडी के जमाना बीत गया, ठंडी के बाद कौन सा सीजन आता है, गर्मी। गर्मी के सीजन आया तो एक दिन अब भगवान का परमसंत हो चुका था कार्तिक में, क्योंकि बच्छपाल से गोपाल हो चुके थे। तो भगवान ने अभी बछड़ा नहीं चराते, गाय चराने के लिए जाते थे, तो गाय चराने के लिए थोड़ा दूर दूर जाना भी पड़ता था उनको। तो एक दिन ऐसे गर्मी का समय था, ग्रीष्म ऋतु था, भगवान ने अपने सारे ग्वाल बाल साथियों के साथ सारे गायों को लेकर निकल पड़े, लेकिन बलराम उस दिन नहीं गए। बलराम क्यों नहीं गए, कहते हैं कि बलराम जी का उन दिन उनका स्व नक्षत्र पूजा था। आजकल हम लोग जन्मदिन मनाते हैं बर्थडे, अंग्रेजी कैलेंडर को उनसा डेट लेते हैं उसकी मनाते हैं, वो डेट नहीं होता, वास्तविक वैदिक नियम है नक्षत्र अनुसार होना चाहिए, राशि नक्षत्र के अनुसार। जन्म नक्षत्र जब पड़े उसी दिन जन्मतिथि की उद्यापन करना चाहिए। तो बलराम जी का उस दिन स्व नक्षत्र था, तो इसलिए माता रोहिणी ने उनको रख लिए, बोले आज आप मत जाओ, आज आपको पूजा होगा, नक्षत्र पूजा होगा। तो बलराम के बिना कृष्ण और साथी लोग ने गए, असली कारण तो ये है, जब भी कभी भगवान ने कोई विशेष लीला, जैसे कोई सर्प के साथ लीला करेंगे तो भगवान की इच्छा के अनुसार बलराम जी नहीं जाएंगे इस लीला में, जानते ना। अघासुर के लीला में भी बलराम जी एब्सेंट थे, कोई ना कोई बहाना लेकर वो नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बलराम तो आदि शेष है, सारे सर्पों की सरदार है वो, तो अनंत शेष है, और वो रहेंगे और बाकी सांप का लीला कैसे, वो देखने से सर वो सार के सामने अपना काम नहीं चलेगा ना, हर एथलेटिक के सामने, तो इसलिए वो नहीं जाते थे, बोले चलो। तो इसलिए भगवान की इच्छा से भगवान बोले होंगे आज कालिया के साथ हमारा मुठभेड़ होगा तो आप मत जाइए, आपको देखने से फिर कालिया ड्रामा बंद कर देगा, आ गया ना स्टेज में, शर्म करेगा। तो भगवान ने बलराम जी नहीं गए थे, बाकी सब साथ के लेकर के चल पड़े। गर्मी के समय था तो ब्रज की तो रेत जानते हैं, ब्रज में जहां तहां देखो रेती रेत है, तो बहुत गर्मी था। और आप जानते हैं वो कभी चप्पल नहीं पहनते थे भगवान, या उनके कई भी साथी चप्पल नहीं पहनते थे, जबकि जसोदा माता चप्पल की व्यवस्था किया था, लेकिन भगवान बोले हम पहनेंगे, हमारे जो मालिक है गोधन है वो तो चप्पल नहीं पहनते, हम कैसे पहनेंगे, हम उनके सेवक है वो नहीं पहने, हम कैसे पहनेंगे। तो कोई चप्पल नहीं पहनते थे, कृष्ण भी नहीं पहनते, कोई नहीं पहनते थे। ओ इतना गर्मी है बालू गर्मी, आगे आगे गाय चलते हैं, पीछे पीछे ग्वाल। अब चलते चलते जब ज्यादा गर्मी तेज हुआ और घास फास भी सूख जाता है गर्मी में, सूखे घास खाएं इतना गर्मी में, प्यासी हो गए गाय, तो दौड़ने लगे जमुना जी की ओर, उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल भी चलने लगे। तो जमुना जी के वृंदावन के तरफ से दक्षिण की ओर एक विशाल ह्रद था, जमुना जी को सट करके था वो, तो बहुत बड़े 4 कोस लंबा चौड़ा बताते हैं उसका, विशाल ह्रद था, समुद्र से और गहरा था। इस ह्रद में एक जमाने में एक ब्रजवासी संत थे जिनका नाम था सोवरी मुनि, मुनि वो तपस्वी थे, वो तप कर रहे थे, बोले कि ये दुनिया में हर जगह में डिस्टर्बेंस है, तभी जमाने में, आजकल तो गाड़ी घोड़ा कितने डिस्टर्ब, तभी जमाने में डिस्टर्ब फील कर रहे थे, बोले इट्स टू मच, कोई अच्छा जगह वो डिस्टर्बेंस ना हो, तो कोई अच्छा जगह नहीं मिला तो पानी के अंदर चले गए, उनके अंदर ये योग्यता थी सिद्धि थी, जलस्तंभन विद्या जानते थे, पानी के अंदर रह करके वो रह सकते थे। तो इस ह्रद के अथल जल के अंदर बैठ कर तप कर रहे थे, उनको यही जगह चुना, उनका उनका कहते ना उनका ये भजन करने का रूम था, ये रूम बनाया उनको ह्रद के अंदर, तो वहां भजन करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान के वाहक श्री गरुड़ जी आए घूमते घूमते, आकर के वहां पहुंचे। गरुड़ जी तो भगवान के परम भक्त हैं, तिलक तो लगाते हैं लेकिन फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, आप सब समझते होंगे, नहीं करते। तो देखे कि ह्रद में बहुत बड़ा मछली, वो सारे मछलियों का सरदार था वो, तो उसको जैसे नजर पड़ा, छलांग मारे, उनका भोजन था, पकड़ करके वहीं बैठे बैठे उसको पा लिए, पाली। तो बाकी सारे मछली इतने डर गए, डर के मारी हा हुल्ला, पूरा मछलियों के कॉलोनी में पूरा हल्ला घुस गया, टेररिस्ट आ गए, हाँ बीच बाजार में मर्डर हो गया, वो तो पता नहीं गायब खा लिया, सब इतने भय भी डर के मारे थे, किसको बोले किसको करे, मछली बिचारा क्या करेंगे, देखे कि हमारे कॉलोनी में ये जोगी बैठा है सबरी, ये तो मनुष्य है कुछ कर सकता है, बड़े तप कर रहा, तो सारे मछली उनके पास आए डर के मारे, हाथ जोड़ के उनके प्रणाम किए, स्तुति किए, उनको बहुत काकुते मिनती किए, देखिए ऋषि जी ऐसे ऐसे हाल है, हम बेचारे हम तो कहीं नहीं जाते हैं, ही रहते हैं, वो आ करके देखो मर्डर कर लिया, अब पता नहीं और किसी को मार भी सकता, कुछ कर सकता, हम तो बहुत डरे हैं, प्लीज थोड़ा कृपा कीजिए, हमको बताइए कुछ। तो सवरी मुनि, आप जहाँ ज़्यादा दिन रहेंगे ना अपने लोगों की, तो अपनीयता थोड़ा बढ़ जाता है ना नहीं? तो सवरी जी इतने सालों से यहाँ रहते थे पानी के अंदर, जो जलचर प्राणी के साथ उनका थोड़ा घनिष्ठता आ गया था, तो आपने बासिंदा आपने पड़ोस में रहने वालों के इतने बड़े विपत्ति को देख करके, गरुड़ जी आ करके इस प्रकार अटैक किए उनको देख करके, वो भी थोड़ा गुस्सा में बोले गरुड़ जी क्यों आकर इसे डिस्टर्ब करते हैं, इधर उनको जागा नहीं, तो उनके सपोर्ट में आकर उनके नेता बने, मछलियों का नेता बन करके उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मछलियों के ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने उनके तरफ से आकर के गरुड़ जी को डांटे, जल से मुंह निकाल करके पानी उठा, पानी से उठ करके गरुड़ जी को डांटे लगे। गरुड़ जी बोले भाई आप अपना काम करो, मुझे क्यों आकर ऐसे गाली देते भाई, ना नहीं तुम ना सारी, भगवान की ऐसे ही विधान है, जीव जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव को खा करके तो जिएगा, मेरा भोजन में आके खा, नहीं 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 यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं कर सकते, अरे तुम कौन हो मुझे बोलने वाले भाई, ये चराचर सृष्टि मेरे मालिक का है, तेरा है क्या? तो सुब्रमणि तो डांट कर बोलने लगा, गरुड़ जी कुछ नहीं बोलते थे, बोले क्या ये न्यू डिवोटी है आज का, गरुड़ जी के हिसाब से बहुत जूनियर थे वो, गरुड़ जी उनसे कई सीनियर होंगे, सब प्रकार से सीनियर है, लेकिन वो तो आपने आपको सोचता कि मैं जलचर जो प्राणी है उस हृदय में मछलियों का, वो मैं उनके तरफ से हूँ, उनके ऊपर कृपा करूंगा, वो तो जय जयकार करते थे, उनके पीछे सब खड़े थे, हाँ बहुत अच्छा उनको डांट रहे, और गरुड़ जी नहीं माने, अनसुनी कर दिए, तो उनको गुस्से में आके सांप दे दिए, बोले देखो गरुड़ अगर इस बार तो खा लिया, एक बार कभी भी दोबारा अगर इस जगह पर आए और इस प्रकार अटैक किए तो आपका मृत्यु हो जाएगा। गरुड़ जी की थोड़ा हंसी आई, बोले बेशरम मैं साक्षात श्री हरि के धारण करता वाहन हूं, जिन हरि का नाम स्मरण मात्रेण, जिनका चरण कमल का चिंतन मात्रेण साप ताप पाप भाग जाए, और उनको जो मैं हमेशा शरीर में धारण करके वहन करता हूं, उनको ही न्यू डिविटी का साप लगेगा। बोले चलो क्या करें, लेकिन उनका तो दंभ देखो, सोच नहीं रहा है। तो गरुड़ जी चाहते तो वही उनके सामने ही और दूसरा मछली खाते, काम कुछ काम नहीं करता उनका साप, बिल्कुल कुछ नहीं काम करता उनके ऊपर, लेकिन गरुड़ जी ने सोचे मेरे प्रभु ब्राह्मण्य देवाय है, ब्राह्मण को बड़े सम्मान करते हैं, तपस्वी को बड़े सम्मान करते हैं, तो मैं उनके दास हूं, तो मैं भी ब्राह्मण और तपस्वी को सम्मान करना उचित, चलो ठीक है वो जो कहते। बोले ठीक है मैं नहीं आऊंगा, ओके अब ठीक है ना, नहीं आऊंगा बस और क्या, बोल के गरुड़ जी चले गए। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, थोड़ा अफेंडेड फील किए उन्होंने, थोड़ा अफेंड फील किए। अब गरुड़ जी जैसे महाभक्त साक्षात हरि के सेवक, उनके चरण में अपराध कर बैठे सबरी मुनि, भले इतने बड़ी दुर्दांत तपस्वी की पानी के अंदर साधन कर रहे हैं, इन अपराध के फलाफल ये हुआ, आगे चलकर देखेंगे कितना भयानक फलाफल होगा। तो जो मछलियों को जब सांप देख रहा है सारे मछली लोग तो फेस्टिवल के, गरुड़ जी नहीं आएंगे छुट्टी, हमारे ऋषि जी इतने पावरफुल हो ये है तो सोरी मनी भी खूब फूल गए थे लोग, मैं इतने कृपाल हूँ उनके सब बचा, पूरे कम्युनिटी अभी बड़े शांति से रहते हैं मेरे तप के प्रभाव से, गरुड़ जी को बयान ऑर्डर लगा दिया, सब शांति में रहे, शांति में तो रहे, इतने खुशी मनाए कि आपस में आकर के हमेशा उनके आसपास घूमने लगे। अब एक दिन वो मछलियों के अंदर भी मेल फीमेल होते हैं, वो आकर के ऋषि के सामने इधर उधर बैठ करके अपने प्रसंग शुरू किए। अब स्थलभाग में तो डिस्टर्ब फील कर रहे थे, वहां चले गए थे, बोले नहीं माया का प्रभाव है। अब इस अतल जल गर्भ में जिनके ऊपर कृपा किए थे, जिनको बचाए थे, उनके इतने आत्मीय बने थे, उन्हीं के प्रसंग को देख करके उनके मन में काम भाव जात हुआ। अब क्या करें, मछली को तो शादी कर नहीं सकते, तो इतने विचलित हुए पानी के अंदर बैठे बैठे, अब संभाल नहीं पाए, जमुना जी से उठे, उठ करके सीधा मथुरा गए सिटी में, वहां तभी राजा मांधाता जी रहते थे, उनके 50 राजकुमारी थी, 50 बेटियां थी उनकी, सारे को सारे 50 को 50 शादी कर लिए, एक दो नहीं 50 शादी कर लिए। बताओ जो एक दिन स्थलभाग छोड़ करके पानी के अंदर डूब करके भजन करने वाले, अब ये उनका हुआ परिणाम। एक तो उनका तो यह हाल हुआ, अब दूसरा जिनके रक्षा के लिए, जिस कम्युनिटी की बचाव के लिए, रक्षा के लिए गरुड़ जी को इतना डांटे सांप दिए, उनका क्या हुआ कि गरुड़ जी जो जानते हैं उनका भोजन है, प्राणी मछली खाते हैं, वो तो पकड़ कर मछली सांप जिसको पकड़ दिखा जाते, तो पूरे समुद्र के अंदर एक जगह है जिसको नागालय कहते हैं, रमणक द्वीप। रमणक द्वीप में बहुत संख्या में नाग रहते हैं, तो गरुड़ जी नाग खाने के लिए बड़ा उनको टेस्ट लगता है, अच्छा पसंद करते हैं, तो वहीं जाते थे खाने के लिए। तो इसमें नाग लोग बहुत डर कर के त्रस्त हो गए, बोले गरुड़ जी आते हैं जिसको जो पकड़े खा गए, तो कुछ को खाते थे, कुछ को मार मुर कर फेंक देते थे। तो वो डर के जा करके नाग लोग के जो उनके हितैषी अनंत देव, उनके पास जाकर प्रार्थना किए, तो गरुड़ जी भगवान को तो भगवान के दास हैं, वो तो उनके पूज्य हैं, उनको तो सम्मान करते ही थे, लेकिन अनंत शेष भी भगवान के संबंध होने के कारण उनको भी वो बहुत सम्मान करते थे। तो एक दिन अनंत देव ने एक मीटिंग बुलाए, सारे नागों को बुलाए, गरुड़ जी को बुलाए, बैठ करके राजीनामा कराए, एग्रीमेंट साइन कराए, बोले देखो भाई वो डरे हैं, आप ऐसे काम करो ना, क्या करें ना, अभी एग्रीमेंट होता है, ये सारे नाग लोग आपके भोजन की व्यवस्था करेंगे। एक पर्टिकुलर भोजन स्थली चुना गया, एक विशाल वटवृक्ष है, उसके नीचे एक नाग और बहुत सारे भोजन सामग्री, वो प्रतिदिन टाइम पर ला के रख देंगे, आप अपना आए अपना खाकर जाए। स्थान भी मेन्नू और भेन्नू दोनों फाइनल हो गया, है ना, नहीं और तो गौड़ जी बोले ओके, एग्रीमेंट साइन हो गया, वो अपना टाइम पर आते थे, अपना स्थान पर भोजन करके चले जाते थे। लेकिन इन सर्प वन नाग वंश में एक उदंड नाग हुआ, बिल्कुल जवान था, वो बदमाश टेररिस्ट निकला, हो तो वो इतने बलवान था, उनका सहस्र फण था, सहस्र फण होने के कारण तो अपने बल के मारे बिल्कुल चूर चूर होता था, बड़े गर्वित होता था और किसी को नहीं मानता था। यहां तक कि आनंद शेष की बात है, वो बूढ़े हो गए, उनका क्या बात सुनते हैं, अब तो एजेड हो गए उनके बात, हम यंग है अभी, अपना ताकत है और अपना एक गुट बना, एक गोष्ठी बना लिया अपना, हाँ बिल्कुल हंगामा शुरू किया। तो किसी को नहीं मानता था। इसे उग्रवादी होने लगा तो चांचल्य मचला। और जिस दिन एक दिन उन्हीं का टर्न आया था, वो तो गुस्सा होता था, वो नियम किसी मानते नहीं था। वो जो उनका टर्न क्या हो, जो सामग्री रखा गया था गरुड़ जी के लिए, स्वयं जाकर खा गया, खा रहा था और गाली बक रहा था गरुड़ जी के लिए। आएगा तो मैं देख लूंगा, क्या समझ रखे आप लोग डरे, हम डरने वाले थोड़ी है। और आपने पार्टी लोग को बोला रेडी कर रखा, गरुड़ जी आएंगे तो आज फाइटिंग हो जाए, फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे। हमको क्या समझ रखे, हम ऐसे ऐसे दुर्बल नाग थोड़ी हैं। तो आपने बल पर बड़े डिंग हांग करके खूब, अब उनके आहार को भी खा जा रहा था। गरुण जी के टाइम पर लैंडिंग किए, अब देखे एक उदंड युवक नाग ने अपने सहस्र फणवा ले और वो तो भोजन कर रहा है, बड़े उदंडता दिखा रहे। गरुड़ जी बोले अरे ये कौन आ गया इसे। तो गरुड़ जी की देखते ही बाकी सारे भाग निकले, सब भाग कर जा छिप छप गए। वो तो अपने पूरा सहस्र फणा निकाल करके खड़े हो गया, चैलेंज किया गरुड़ जी को। गरुड़ जी बोले अरे वाह, आज तो कोई सांप मेरे चैलेंज करने निकला। थोड़ा सोचिए क्या तुलना दूं मैंने आपने। अभी हम लोग से तुलना अगर दिया जाए, हम लोग डेली जो भोजन करते हैं नित्य प्रति भोजन, चलो रोटी खाते ना अपने, एक दिन रोटी प्लेट से उठकर आपसे झगड़ा करके कंप्लेन करेगा, अरे जो दो बार में मुख में एक बार में स्वाहा कर देते हैं वो कंप्लेन करेगा तो हंसी नहीं लेगा। गरुड़ जी का नित्य प्रति का भोजन वही है सांप नाग है, और वो उनके साथ लड़ने के लिए झगड़ने के लिए तैयार। अरे तू मेरा लंच है, तू मेरे से लड़ेगा, लंच पैकेट भी लड़ने आएगा खाने वाले से, कि विचित्र बात है बताओ। गरुड़ जी हंसने लगे, अरे तू इतनी बेशरम हो गया, आज तेरा टर्न है, मुझे मैं तुझे भोजन करने वाला हूं, तू मेरे से उपद्रव करने आ रहा है, भोजन उपद्रव करे, थाली उठ करके आपके झगड़ा करे। गरुड़ जी बोले हद हो गया ये बात का तो। अब वो तो अपने पूरी पराक्रम से चैलेंज कर रहा था। गरुड़ जी बोले चलो देखते हैं। आए नीचे, अपने बाएं पंख में एक थप्पड़ सा मार दिया उसको, एक थप्पड़ मारा। बोले बेटा शांत हो जाओ, इतने क्यों चिल्ला रहा है, थोड़ा थप्पड़ मार दे बाएं हाथ से। बस इतने सामान्य आघात बाएं पंख से लगा, उनका तो मानो मगज ठंडा हो गया। इतने आघात से इतने विचलित हो गया, इतने कष्ट लगा, इतने भयभीत हो गया कि मुंह नीचे करके समुद्र से पानी में डूब करके भागा, ऊपर नहीं देखा, पानी के अंदर से अंदर द्रुत गति में भागा भागा। पता नहीं कहां एक बार आते आते समुद्र में बंगोपसागर, यहां आकर के गंगा जी से जमुना जी। डर के मारे कहीं से गूगल में सर्च किया होगा कि गरुड़ जी से बचने के लिए कौन सा जगह है, सर्च करके नेट से देख लिया कि पूरे संसार में एक ही जगह है तो गरुड़ प्रूफ है। गरुड़ प्रूफ समझते ना, जहां पे गरुड़ जी का प्रभाव नहीं चलेगा वो है सांप मिला ना, वही हद में। वो ये जो हृदय है जमुना जी का दक्षिण भाग, इस हृदय में सुवर जी रहते थे, वहां सांप दे दे गरुड़ जी वहां नहीं जाएंगे, बाकी सब जगह तो गरुड़ जा सकते हैं, ये उनको पता चल गया। जैसे पता चला तो एड्रेस लेकर के दौड़ा वहीं पे सीधा, कि एक थप्पड़ खाया था केवल, इतने उनको डर लगा, इतने व्यस्त हो गया कि वो पूरा राज्य छोड़ करके भागा। देखिए अगर आप उग्रवादियों टेररिस्टों को दमन करें तो यही एक उपाय है, एक क्षण भाग गया राज्य छोड़कर, कभी आने का सोचा ही नहीं, संकल्प कर लिया जाऊंगा नहीं, जहां से कोई नहीं जा सकता वहीं बैठेगा जाकर। एक बार वो जमुना जी के हृदय में आके बैठा और उनका सहस्र फण में अजस्र हलाहल विष था, बहुत विषैली सांप था। इस विष के कारण वो तो बड़ा गर्वी होता था। तो जैसे वो पता लगा करके वो जमुना जी के हृदय में आ गया तो उनका विष के प्रभाव से पूरा पूरे ह्रद में जितने करोड़ों संख्या के जलचर प्राणी थे सब स्वाहा। समझ आ ना मैं क्या कहता हूं? वही जलचर प्राणी को, वही ह्रद में रहने वाले जलचर जीव को बचाने के लिए सोहर जी ने गौड़ जी को अफेंड किए। अब उसका परिणाम देखिए, अपराध का फलाफल कैसे निकल रहा है। एक तो उनका जो हाल हुआ, 50 शादी करके ऊपर गए, और इन जिनों के लिए गौड़ जी को डांटे थे उनका एक साथ में होल सेल में मर्डर हुआ। पहले तो गौड़ जी अच्छे थे, एक दो पकड़ कर खाते थे, होल सेल एक दिन में स्वाहा। महाविषधर सर्प आया और इस ह्रद तो विष के ह्रद बन गया। कितने सुंदर अमृतमय जल था, उसमें तपस्थली था, उसे तप किया जाता था, सबरीमणि करते थे। आज वैष्णव अपराध के कारण विष स्थली बना। और इतने पावरफुल विष था कालिया का, वो तो शांति में आकर बैठा, बोला गौड़ जी नहीं आएंगे, यहां रहता था, और अपने परिवार को सब बुला लिया फोन करके। बहुत बड़े भारी परिवार था उनका, कई पत्नियां थी, सबको बुला लिया, आकर वो सकुटुंब ही रहने लगा। तो और जितने पानी में रहने वाले मछली और जितने जलचर प्राणी थे सब तो खत्म हो गए। केवल इतना ही नहीं, अगाध जल वाली ह्रद में उनका विष के प्रभाव के कारण वो बोलते हैं कि बिल्कुल खोल रहा था, इतने तेज विष का प्रभाव था, पानी बिल्कुल खोल रहा था, बॉइलिंग वाटर जैसे होता था, लाल पीला होकर बॉइल हो रहा था। और उनके शरीर से जो हवा निकल रहा था वो वायु वातावरण में जाकर के आसपास जितने पेड़ पौधे सब सूख करके भून गए। आधा किलोमीटर, एक किलोमीटर तक डायमीटर में, एरिया में कोई पेड़ पौधे घास लता विरुद्ध तक में नहीं रहे, इतने विषैल प्रभाव से मर गए, जल भून गए। यहां तक कि वर्णन आता है कोई पक्षी ऊपर से उस ह्रद के ऊपर उड़ कर जाते तो वो भी वहीं मर जाते गिर गिर। कोई पक्षी भी ऊपर से नहीं जा सकते हैं, आसपास में कोई पशु पक्षी पेड़ पौधा टिके नहीं, कोई बायचांस चला गया तो वहीं मर जाएगा। इतने भयानक विष प्रभाव हुआ और उसी में वो रहता था। था कहां? वृंदावन में, भगवान के घर में रहा, अनेक दिन तक वहां रहा। गौड़ जी नहीं आएंगे, शांति से वही अपना क्वार्टर बना के वहीं रहा। तो एक बार की घटना है, तो जब उन्होंने गाय और ग्वाल वाल सब उसी दिग में चले, ये बात सबको पता था वृंदावन में कि यहां काली नाग रहता है, महाविषधर, कोई नहीं जाना चाहिए वहां, कोई अगर बाई चांस भूल भटक में गए उसका रेंज के अंदर तो खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए कोई लोग नहीं जाते थे वहां, पशु पक्षी भी नहीं जाते थे। तो आज तो गाय को क्या पता हो, तो भाई चलते थे, उनके पीछे कृष्ण चलते हैं, उनको क्या डर है, वो तो चल पड़े। और दूर से दिखाई पड़ा जमुना जी और दौड़ पड़े, प्यासे थे पानी पीने के लिए। जमुना जी तो दूर है, वो ह्रद में पास पहुंच गए, ह्रद पर पहुंच करके वो मुंह लगा दिया, पहले से झुलस गए थे गर्मी ऊपर विष का प्रभाव, लेकिन वो प्यासे इतने थे जाके मुंह लगा दिए ह्रद में पानी पीने के लिए। अब दो चार घुट पिए नहीं, वहीं टल पड़े सब, जितने गाय थे सब वहीं की वहीं गिर पड़े। उनके पीछे पीछे उनके रखवाले ग्वाले दौड़ते थे, वो भी प्यासी थे, गर्मी था, नीचे गर्म ऊपर गर्म और प्यासी, वो भी दौड़ते थे। वो भी दौड़ते दौड़ते गए, जाकर देखे ये हाल, अब कोई पानी पिया नहीं पिए, उनके पास में गए, उनका भी वही हाल, सारे मर गए, सारे ग्वाले सारे गाय सब, एक भी नहीं बचे। भगवान एज में छोटे थे, 6 साल की उम्र था भगवान का तभी, तो दौड़ के चले, वो भी अपना हिसाब से दौड़ दौड़ के गए और जाकर देखे तो ये हाल, कोई एक भी नहीं, सारे गाय लक्षाधिक संख्या में गाय और इतनी संख्या में ग्वाले सब निहत होकर पड़े। भगवान समझ गए कि ये विष के प्रभाव है, विष जल को स्पर्श करके पी करके उनके प्रभाव से ये सवाल हुआ। करुणा निधान प्रभु ने, भले छोटे से बालक थे 6 साल के, कुछ नहीं किए, एक दृष्टि भर डाले सबके ऊपर, एक नजर डाल दिए, इसे इसे कर देख लिए, खड़े होकर के सब उठकर खड़े हो गए। दृष्टि मात्र से सारे गाय सारे ग्वाल बाल सब निष्प्राण शरीर जीवित होकर खड़े हो गए। जीवित होकर के से नींद से उठे, ऐसे उठ करके आपस में देखे कि अरे याद किया, हम तो सब पानी पीकर मर गए थे, बचे कैसे, कैसे बचे, कैसे बचे, कारण ढूंढने लगे। देखे कि कृष्ण खड़े, बोले अरे कनु है क्या इधर, तो जानते हो तो क्या होगा, वही बचा दिया होगा। कैसे मान लिए बचा दिया होगा, क्योंकि थोड़ी दिन पहले एक सांप के साथ मुठभेड़ हुआ था। एक सांप था, उनको ये समझे कि हाईवे है करके, पुणे बम्बे हाईवे समझे थे उसको, नया बना है रोड शायद, बड़े सुंदर लाइट पोस्ट दो साइड में है, उनका जो दांत था वो लाइट पोस्ट की तरह दिखता था, वो हाई रोड था बिल्कुल जीवा जो, इतनी बढ़िया रोड बना था। तो सारे गाय बछड़े लेकर के उनके अंदर घुस गए, नए हाईवे में चले, उनको पता नहीं है, बड़े चेक पोस्ट लगता है, ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है, लेकिन वो चले गए उसके अंदर सीधा। वो कौन था, अघासुर। तो चले गए थे और कृष्ण बुलाते थे लेकिन कौन सुने, सब अंदर चले गए, तो कृष्ण को अंदर जाना पड़ा। अब जा करके उनको उद्धार करके लाए, तो बोले चलो यहां से बचा लिए, सांप के पेट से बचा लिए, अब सांप तो दूर है, सांप के बीच से बचा ले, कौन सी बड़ी बात है, बचा दिए। यहां वो भी एक ध्यान देने की बात है, भगवान की दृष्टि से इतने शक्ति है, इतने अमृत तत्व है, किसी को देख ले महा महाविष के प्रभाव भी लुप्त हो जाएगा। जिसको सांप निगल चुका था वो बच गए, जिसको सांप विष अटक गया था वो भी बच गए, दोनों ओर से कुछ प्रभाव नहीं करे, दृष्टि से ये शक्ति है। जिला दिए तो सब बोलने लगे, बाबा ने बोल रहा था कि इस दिशा में नहीं आने के लिए, यहां कालिए रहता है। सब जो बड़े बड़े थे सब बोलने लगे, ऐसे है कालिए का प्रभाव, सब वर्णन करने लगे। तो भगवान बोले अच्छा ना, वहां कोई पानी जीव जंतु नहीं रहते, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो भगवान ने सोचे ये बहुत हो गया, हमारे गांव में हमारे घर में आकर के ये सर्प महासर्प आकर कितने द्वेष कर रहा है, कोई जीव जंतु गाय बछड़े ठीक से नहीं चल सकते, पानी करके पीते मर जाते हैं, तो उसका कुछ करना चाहिए, उसके लिए कुछ कार्यक्रम करना चाहिए। विचार किए तो जब यद्यपि कहते हैं कि यहाँ एक पेड़ था कदम के वृक्ष, जिसके नीचे जाकर सब खड़े हुए, चारों तरफ कोई एक भी पेड़ नहीं था। क्यों पेड़ नहीं था, जमुना तीर बनाचारी, क्योंकि इस एरिया विष के प्रभाव से सारे पेड़ भून के मर गए, कोई घास पौधे पेड़ कुछ नहीं था, लेकिन एक महाद्रुम पेड़ था कदम वृक्ष। आपका मन में प्रश्न होगा ये कैसे रहा, जब सब विष के प्रभाव मर गए ये कदम का वृक्ष कैसे नहीं मरा। वो कदम पर रुखे इसलिए नहीं मरा कि उसको भी अमृत स्पर्श था। ऐसे किंवदंती है कि एक बार जो कश्यप ऋषि हैं उनके अनेक पत्नी है, सारे जाति के लोग सो कश्यप ऋषि पैदा किए हैं, मुख्य प्रजापति हैं। तो उनके एक पत्नी का नाम था कयादु ने कद्रु, एक पत्नी का नाम था कद्रु जो नाग माता है, और दूसरे एक पत्नी थे जिसका नाम था बिनता, जो पक्षियों के माता है, देव दानव पशु पक्षी सब उनसे निकले, तो दोनों सपत्नी है। तो एक दिन अपने राजमहल में वो दोनों रानियां, दोनों सपत्नी, कौन कौन, बिनता और कद्रु, वो जाकर के राजमहल में बातचीत कर रहे थे, अपने से अच्छा फ्रेंडशिप था। तो इतने में स्वर्गलोक से इंद्र की उच्च स्रवा घोड़ा आ रहा था, तो देखे विशेष घोड़ा है, देखकर बोले देखो उच्च स्रवा घोड़ा है, उसको देख रहे थे, फोटो फोटो कैमरा था नहीं तो लेते, लेकिन जब देखे तो उनके सामने उच्च स्रवा घोड़ा उनके महल का पास होकर निकल गया। जिसे निकल गया उसको देखकर आपस में बातचीत करने लगे, तो कद्रु ने बोलने लगे देखा आपने घोड़ा को ना, कितने काला काला सा घोड़ा, ना काला थोड़ी था, सफेद था ना, नहीं काला था नहीं सफेद था। लो आपस में जुक्ति हो गया, क्योंकि बिनता जी ने घोड़े को आते समय देखे थे और वो जाते समय देखा है ना, नहीं उच्च स्रव घोड़ा का जो पूछ था घने काले पूछ था उसका, काले रंग के थे, और वो घोड़ा था सफेद रंग के। तो उनके पीछे तरफ से देखे कद्रु ने, उनके पूछ देखकर बोले तो काला घोड़ा है, और उनके सामने देखे थे बोले सफेद घोड़ा है। तो दोनों के अंदर से चैलेंज हो गया और चैलेंज बढ़ गया। रानी लोग है, राजा रानी का तो अपना अहंकार होता है, तो बोले ऐसा नहीं मैं नहीं देखी हूं, बोला मैं देखी हूं। बोले अच्छा चैलेंज हो जाए, अगर सफेद हो तो, अगर काले हो तो, वो तो डेली आता है, काला आएगा कल देख लेंगे, देख लेंगे क्या चैलेंज, अगर सफेद घोड़ा हो तो। विनीता जी ने बोला बोला मैं खुद देखी हूं सफेद है, अरे मैं खुद देखी हूं काले, अगर काल देखेंगे सफेद घोड़ा सफेद निकला तो ना, अगर सफेद होगा तो आजीवन मैं आपका दासी बन जाऊंगी। अच्छा इतनी बड़ी चैलेंज, मैं भी वही चैलेंज करती हूं, अगर घोड़ा काला निकलेगा तो मैं भी आजीवन आपकी नौकरानी बन जाऊं। दोनों ही गंभीर हो गए, छत के ऊपर में गए थे घूमने के लिए, अब ये घटना होकर नीचे आए, मुंह गंभीर करके बहुत भारी होकर के आए, मन में दोनों के डाउट है, हो ना हो काला तो नहीं निकला, निकलेगा सफेद तो नहीं निकलेगा। अब वो तो खुद देखिए बोलते मैं तो खुद देखा था सफेद, बोलते मैं भी देखा काला, लेकिन वो इतने बढ़ करके इतनी बड़ी चैलेंज की, क्या मेरे आंख में कुछ नंबर बदल गया, क्या कोई गजबड़ी तो नहीं हुआ, मैं ठीक से नहीं देख पाया, अब डाउट तो होता ही है। तो डाउट में आए आ करके, और उस दिन इतने उनको ये हुआ कि अब घर में आए वो खाए नहीं, बड़े चिंतित में बैठे रहे। तो बिनता जी आ करके बिल्कुल मुंह सुखा कर बैठे रहे, तो उनके पुत्र गरुड़ जी, गरुड़ जी संपत्ति जी जटायु ये सब बिनता पुत्र हैं। तो गरुड़ जी आके बोले माता जी क्या हो गया, बड़े दुखी है आज खान पान, अरे क्या करूं बताइए बताइए। तो फिर माता जी ने बताने लगे ऐसे ऐसे घटना हुआ, पूरे आमूलचूल स्टोरी बता दी, ऐसे ऐसे हुआ। बोले अच्छा उच्च स्रव घोड़ा के ऊपर चैलेंज हो गया, मैं जानता हूं ना, मैं तो हमेशा आना जाना करता हूं, वो तो सफेद है, ये तो सादा घोड़ा है, हम सब जानते हैं, आप चिंता मत करो आराम से खा पी कर सोइए, कल देख लेंगे प्रूव होगा आप जीतेंगे, चिंता मत करो। विनता जी बहुत खुश हो गए, बेटा सही बता रहे, मुझे क्या पता नहीं, आप डॉट मैं तो पूरा घूम रहा हूं, भगवान के कैरियर हूं, उच्च स्रव घोड़ा तो ऐसे कई बार मुझे सैल्यूट मारा होगा और क्या, तो सफेद मैं जानता हूं उनको। तो विनता जी बड़े प्रसन्नचित खुश हो गए, खा पी कर आराम से चैन से सोई। यहां भी कद्रु का भी यही हाल है, वो भी मुंह निकाल कर बैठी थी, वो सारे नाग लोग आए बोले माता जी क्या हो गया, ना इसे इसे घटना है। तो बड़े नाग जो सब अनंत से नाग लोग बोले माता जी फंस गए, घोड़ा तो सफेद है हैं? लेकिन मैं देखा काला था, आपने पीछे तरफ देखा होगा, बड़े मोटे काला पूछ है उसका, लेकिन है तो घोड़ा सफेद, नारे मर गई क्या, हमें तो चैलेंज हो गया, जो काल अब प्रूव है घोड़ा सफेद निकला, तो मैं आपको छोड़ करके सदा के लिए उनके दासी बन के रहना पड़ेगा मुझे। कुछ करो, रोने लगी, कुछ करो, आप इतने सारे हजारों नाग है मेरे, मेरे वंश लोप हो जाएगा, कुछ तो करो मेरे लिए। बाप रे बाप, जो रोने लगी। अब नाग भवन में होल नाइट विशेष मीटिंग चलने लगा, ओवर नाइट इष्ट गोष्ठी। किस विषय क्या था एजेंडा, कैसे बचा जाए? सत्य तो है ही कि घोड़ा सफेद है, सत्य को छिपाना पड़ेगा, मतलब छल करना पड़ेगा। छल करने के लिए सारे सर्प ने बैठ के खूब भारी मीटिंग किए और ये तैयार हो गए। पास किया गया रेजोल्यूशन कि कम से कम हजारों संख्या में जो यंग चुने हुए विकट काले नाग, सेम एज का सेम साइज का, उनको भेज दिया ओवरनाइट। अभी रात रात चले जाओ, जा करके वो हमारे भवन कश्यप भवन से पहले एक दो किलोमीटर हाफ किलोमीटर पहले पेड़ से सब सट करके बैठो। क्या काम कर गया? इससे घोड़ा आएगा फटाफट जंप करेंगे, उसमें सारे शरीर में चिपक जाएंगे, लिपट जाएंगे सारे। आधा घंटे के लिए जब तक वो महल पास करते तब तक फिर निकल कर चला जाना, ये काम आपका ड्यूटी इतना करना है। वो रात भर से जाकर बैठने लगे, जब घोड़ा आएगा तब चिपकेंगे उसको। हजारों नाग भेज दिया गया काला नाग, वो बेचारे माता जी के रक्षा के लिए चले गए सब। अब जैसे उच्च सर्व घोड़ा आया आ रहा था, दूसरे दिन वो महल पर जाकर दोनों रानी बैठे थे। जैसे उच्च सर्व घोड़ा आ रहा था तो जैसे उस रास्ता पर आया तो दोनों तरफ से तो नाग पेड़ को पूरे सटे हुए थे, फटाफट फटाफट जंप करके चिपक गए सारे शरीर। जब महल के पास के पूरे काले को काले, दूर से देखे तो पूरा काले, उनको तो समझ में नहीं आया विनता माता को। मैं भी काल देखी थी, और मेरा बेटा गरुड़ जी बिल्कुल सत्य कहा, वो तो कभी गलत बोल नहीं सकता, वो तो सबसे बड़े जानकार है। उनने मुझे बोला जवाब दे करके, ये घोड़ा सफेद ले आई, ये तो मैं देख रहा हूं काला है, अब क्या करे। घोड़ा पास करके चला गया, अब एग्रीमेंट तो पहले साइन था, वहीं से उनको खींच कर ले बोले चलो मेरे दासी बनो। तो गरुड़ जी के माता श्री विनीता श्री और नागों के दासी बन कर, नागों के घर में नौकरानी बन करके गए, और को बड़े जातना दी उन लोग ने। तो बराबर शाम को आती थी काम करके, आके रोती थी क्या करूं कैसे मुक्त करूं। तो गरुड़ जी बोलते माता जी बता क्या करूं, ना क्या करे ना, इसे आपने बोला था ना, कुछ तो कपट हुआ है, हम डेली देखते हैं घोड़ा तो सब पते, कुछ छल किया है। क्या छल किया है? गरुड़ जी ने पता लगा लिए, बोले ही बदमाशी ने किए हैं वो लोग, सब नाग ने आकर के चिपक गए, आप देख नहीं पाए, आप एक पत्थर फेंकते वो दो चार नाग निकल जाता तो पता चल जाता है, ना सफेद ना काला, वो फिर और कुछ कलर होता, आधा काला आधा सफेद ऐसा निकलता शायद। लेकिन आपके साथ छल कर दिए उन्होंने, और आपको ना छल किए जो कि मैं तो हार गई, अब तो दासी बन गई बचाने के लिए। आप बताए कुछ उपाय बताए, आप कैसे उद्धार करें, ना जाकर उनको पता करिए। तो गरुड़ जी आए, सारे नागों का मीटिंग बुलाया गया, बड़े बड़े सब मेन मेन नाग बैठे, उनके सामने गरुड़ जी आए, क्योंकि नाग डरते थे कि आएंगे तो हम सब खा जाएंगे, बहुत डरते थे गरुड़ जी को। तो पहले नहीं, पहले विनता माँ बैठेगी तब आप आएंगे, कोई दुष्टता नहीं करना जिसे। तब बैठे, मीटिंग हुआ, गरुड़ जी ने पूछे बताओ क्या करने से आप लोग मेरे माता जी को मुक्त कर देंगे दासित्व से। तो बोले थोड़ा दो तीन दिन टाइम दीजिए, हम बताएंगे। क्यों भाई, इतने बड़े जानते हैं गरुड़ जी महासमर्थ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, यही एक चांस है, क्या मांगेंगे क्या मांगेंगे। उनके मंदिर में तो कई लोग कई बात सोचने लगे, कई बात सोचने लगे, क्या मांगे क्या मांगे क्या मांगे। तो सोच विचार कर रहे थे, जा करके कई लोग करा कई मतामत आया, तब जा करके सब पहुंचे, बूढ़े आदमी के पास जाते हैं, अनंत देव के पास पहुंचे, पहुंचे मीटिंग के, ऐसे ऐसे चांस आया है, गरुड़ जी ने वचन दिए हैं कोई ऐसे एक चीज देने से। बोले अरे आप लोग सब मर रहे हैं, डरने के लिए मर रहे हैं, मरने के लिए डर रहे हैं, तो ऐसा मांग करो ना दुर्लभ ना, क्या ना, गरुड़ जी बोले अमृत कलश ला के दे दे, सब अमृत पियेंगे, सब अमर हो जाएंगे, खत्म। अरे वाह क्या प्रपोजल है, अमृत का मांग करेंगे, सब राजी हो गए। दो दिन के बाद गरुड़ जी आए, सभी एक साथ में बोले हमको स्वर्ग से अमृत कलश ला के दे दो और माता जी ले जाओ छुट्टी, साइन हो गया एग्रीमेंट, इस कंडीशन में मुक्ति कर देंगे। गरुड़ जी बोले ठीक है, आप वही अमृत चाहते हैं, दे दूंगा ला करके, और क्या। तो गरुड़ जी अमृत लाने के लिए गए स्वर्ग में। अरे जी अमृत को पाने के लिए कितने बड़े भारी संग्राम हुआ, समुद्र मंथन करके कितने कष्ट में उनको निकाले थे, कितने बड़ी लंबा झगड़ा हुआ था, लड़ाई के बाद उसको लेकर के देवताओं ने अपने स्वर्ग में रखे, हाई कस्टडी, कई कड़न सिक्योरिटी रखे हैं, उसके ऊपर कई बाउंड्री वाल है अलग अलग प्रकार के, फिर पानी है, बहुत टॉप सिक्योरिटी में रखा गया है, सशस्त्र सिपाही कई जगह में से रुके हुए हैं, बिल्कुल 24 आवर्स गार्ड में रहते हैं, अमृत कलश को जा रखा गया है। तो गरुड़ जी तो महादुर्दश शक्तिशाली है, और ने स्वर्ग के ऊपर अटैक किए देवलोक में, सारे देवताओं मिल करके उनको सामना किए कि अमृत ले जाएगा, अरे लेकर के आप पीते तो कोई बात है, लेकर किसको देंगे, सांपों को देंगे। बोले ये तो कबड़ा हो जाएगा, सारे सांप लोग अगर अमर हो जाए तब तो यही से बदमाश है, तमगुणी है। तो सब खूब विरोध किए गरुड़ जी के दंड करके, लेकिन गरुड़ जी के सामने कोई देवता नहीं टिके, महाबली है। इंद्र कस करके युद्ध किया, बहुत बार वज्र मारा गरुड़ जी के ऊपर, वज्र मारा तो गरुड़ जी देखे वज्र एक दधीची मुनि के हड्डी का है, दधीची मुनि बड़े तपस्वी थे, उनको थोड़ा सम्मान करना चाहिए, सम्मान करने के लिए 3 बार वज्र मारा तो एक छोटा सा पंख निकाल दिया, बोला जा टू रेस्पेक्ट दी वज्र, वज्र को मान रखने के लिए एक पंख निकाल दिया, बोला इतना ही शांति हो जाओ। इंद्र को इतनी शर्म आया, इतने शर्मिंदा हो गया, वो अपने वज्रधारी ना, वज्र के लिए बहुत अपने आप का अहंकार था, 3-3 बार वज्र मारा, एक आधा इंच का पर निकाल दिया, बोले जा इतने भी सट, इतने शर्मिंदा हो गया इंद्र, भाग गया मुंह छिपा करके, क्या लड़ेंगे, और कोई शक्ति काम नहीं कर रहा है, बेकार का। और इंद्र जब भागे, देवराज बाकी देवता क्या करें, सब भागे, सारे बाउंड्री वाल तोड़ करके, सबको मार पीट करके, सीधा अमृत कलश हटा करके वो गरुड़ जी चले। सारे देवता इंद्र के समय दौड़े ब्रह्मा के पास, बोले इसे इसे हो रहा है, ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान के पास दौड़े, विष्णु के पास, बोले प्रभु बचाइए, आपके बाह के इसे इसे कर रहा है, वो पिए तो हम मना नहीं कर रहे, ये तो आपके आदमी है, लेकिन वो लेके सांपों को दे देगा, सृष्टि बिल्कुल बदल जाएगा, कुछ कीजिए प्लीज। भगवान उन डांटे, वो कलश मांग रहे थे, उन थोड़ा दे दें तो क्या मतलब, ना उनको दे देते, हम तो खूब लड़ाई की उनके साथ, अब क्या करें, वो तो ले जा रहे हैं छीन करके। बोले आप गलती की, उनको बस लड़ते थे क्यों, आप जानते हैं गरुड़ जी के साथ अब युद्ध में सामर्थ्य नहीं है तो क्यों लड़े, ना जो हो गया गलती अब क्या करें, ना जाकर संधि करो, रास्ता में होंगे वो जाकर पैर पकड़ो उनके, ना क्या दे देंगे, ना देंगे नहीं, आपका बुद्धि है, इसे काम करो कि सांप भी परे लाठी भी ना टूटे, जाकर उनको रास्ता में उनको मिलो, उनके संधि करो, हाथ मिलाओ, उनको बोलो देखो गरुड़ जी आपको अपने माताजी को मुक्त करना है ना, यही आपका प्रोजेक्ट है ना, वो तो होकर रहेगा, इसके लिए अमृत देना है ना कलश, चलिए अमृत लेकर चलेंगे, आप उनके साथ एक आदमी जाओ पुरोहित बन करके, आपका ड्रेस मेकअप करके जाओ, गरुड़ जी दोनों को लेकर जाएंगे, अमृत कलश को और एक पंडित को लेकर जाएंगे साथ में, और वो जाएंगे, जाके पहुंचेंगे बोले अमृत कलश आ गया, लेकिन कैसे पीना है, पहले से तो प्रिंट पेपर नहीं था ना, हाउ टू यूज, लिपलेट नहीं था, बोले ये पंडित आए बता देंगे विधि विधान कैसे पीना क्या करने, आप तो जानते ना अमृत पीने का कैसे विधि विधान है, वो बता देंगे, अब पहले मुझे अपने माताजी को फ्री कर दो, अब बाकी अपने पीना जब पियो तब पियो, जितना मर्जी बाणे पियो, वो दे देंगे, फिर आप अपने माताजी लेके जाना, बाकी का हम संभाल लेंगे। तो ये बुद्धि मन को आए, तो आकर के सारे देवता गरुड़ जी के साथ चरण पड़े, उनके साथ संधि किए, दोस्ती किए, फिर राजी हुए। तो इंद्र के बेटा जयंत ने पुरोहित बनकर के पंडित बनकर के गया, बड़े चिताचेतन लगे, बड़े भद्र होकर गया, यंग पुरोहित। तो गरुड़ जी दोनों को लेकर गए, जाके सिया सीधा नाग लैंडिंग किए उनके पास में। वो लोग तो खूब प्रसन्न हो गए, अमृत कलश लेकर आए हैं। तो उसको देखे, देख करके जो बड़े बड़े नाग थे सब बोले कि बिल्कुल सही, यही रियल अमृत कलश है। बहुत प्रसन्न हो गए, नाचने लगे। तो गरुड़ जी बोले, देखो भाई मेरा और टाइम नहीं है, पहले हमारा एग्रीमेंट के अनुसार माता जी को फ्री कर मैं जा रहा हूँ, बाकी अपने अपने पीते रहो, फिस्ट करो जो करो। बोले ओके ओके को प्लीज आप जाइए। तुरंत अपनी माता जी को विनीता जी को फ्री कर दिया। जैसे गरुड़ जी बोले मैं जाऊँ बस ओके, वो चले गए। तो बाकी बोले कि आप विधान बताए कैसे पिए जल्दी। बोले देखो ऐसे नहीं पीते हैं, अमृत का फायदा नहीं करेगा ना, फिर बताइए। सबसे पहले शुद्धिकरण होना पड़ा, आप सब स्नान टान ढंग से किए नहीं, शुचि होकर आना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा किस तरह से विधान पीने का है, क्या परिमाण क्या है ना। अच्छा पहले स्नान, हाँ पहले स्नान करके आओ। तो सब दौड़े स्नान के, समुद्र के किनारा था, सब दौड़े, कोई एक भी नहीं बचा। बोला लेट हो जाएगा शायद मुझे पीने, तो सब चले स्नान गए एक साथ। जब सब चले गए स्नान करने के लिए, कुशासन के ऊपर अमृत कलश रखा हुआ था, वो कलश को लेकर भागे सीधा, एक बार डायरेक्ट फ्लाइट पकड़े। वो बेचारे डुबकी लगाकर फटाफट आए, आकर देखते कुछ भी नहीं, ना पंडित है ना अमृत कलश है, दोनों ही गए, तो कलश लेकर भाग गए। आपने में झगड़ा करने लगे, तू क्यों नहीं गया, तू क्यों गया जल्दी, तू थोड़ा बाद में जाता, तू बाद में जाता। बोला तू बोलने से क्या होगा, पहले तो किसी की बुद्धि नहीं आया, सब बेचारे बड़े परेशान हुए, तो गया। अब क्या करे, दुखी होकर के बोले चलो इस आसन के ऊपर अमृत कलश रखा था, वहां तो थोड़ा लगा होगा शायद, उसको जाके चाटते हैं। वो कुशक ग्रास का आसन था, उसको जाके चाटने लगे, उस बड़े धार वाला घास था, उनके जीवा कट गया। इसलिए सांप को देखो उनका जीवा कटा हुआ है। तो बेचारे कटे हुए जीवा लेकर के बैठे, कुछ काम नहीं बना उनका, सब फेल मार गया, वो तो बच के आए। तो जब उन्होंने गरुड़ जी ने अमृत कलश लेकर जयंत के साथ जा रहे थे, तो जमुना के किनारे थोड़ा रेस्ट किए थे उन्होंने, स्वर्ग से इतने क्लांत संत झगड़ा करके आए थे, वही पेड़ था, कदम का वृक्ष में बैठे थे, कि बड़ा वृक्ष था, उनके भार को संभालने लायक दूसरा वृक्ष नहीं था, ये बहुत बड़ा वृक्ष, उसके ऊपर जाके बैठे थे कुछ देर तक। जब बैठे थे अमृत कलश पकड़ कर, एक दो ड्रप अमृत यहां गिर गया था उस पेड़ में। तो इसी कारण से वो पेड़ अभी भी है, अमर हो चुका है। तो इसलिए वो पेड़ को विष के प्रभाव नहीं लगा, वो काली हरत के किनारे वो पेड़ अभी भी है। तो उसी के किनारे बैठ करके काली के गुण महिमा वर्णन कर रहे थे ग्वाल बाल लोग। तो भगवान सुन करके तो बोले कि नहीं, काली के ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो सारे उनके साथियों को बोले कि आप गाय को लेकर थोड़ा दूर चले जाओ यहां से, वहां से गाय को लेकर थोड़ा हट जाओ, यहां से दूर चले जाओ, अब देखो मैं क्या करता हूं ना, क्या करूं, तो अब देखो तो सही आप, लेकिन आप जानते हैं, हाँ आप तो कुछ भी कर सकते, आप जाइए यहां से। उनको थोड़ा दूर हटा दिए आधा किलोमीटर, बोले आप देखते रहिए। भगवान ने तुरंत अपने कछनी टाइट करके बांधे, बांसुरी की फेट में लगा दिए, आप तुरंत चढ़ गए पेड़, चढ़ने में तो उस्ताद थे ही, चढ़ गए पेड़ में, एक बार उच्च शाखा पर चले गए, जाकर सबको दिखाए दिखा करके ऐसे ऐसे ताल ठोकने लगे, बोले अभी मैं जंप करूंगा। कोई लोग, अरे इस मत करो सांप के भाव, अरे देखो तो सही में क्या करता हूं, अब करके सीधा एक ब्रांच जो गया था जमुना की ओर, उनके ऊपर से छलांग मारे, सीधा पानी में छलांग लगाए, इतने जोर से ऊपर से पानी में छलांग लगाए, वो तो खौलता हुआ गर्म पानी था, पूरा विष जल था, बोलते हैं चारों ओर से 100-100 हाथ तक फैल गया। कोई बड़े वस्तु, भारी वस्तु अगर गिरता है तो पानी, भगवान है 6 साल के शिशु लड़का थे, लेकिन जब पानी में कूदे अपने हिसाब से कूदे, अपने रूप से इतने विशाल होकर के कूदे, 400 हाथ तक पानी फैल गया। तो इतने भयानक शब्द हुआ, और पानी में तो तरंग से तरंग आने लगा, सीधा डुबकी लगाए अंदर। ऐसे कहते हैं कि सांप जलचर प्राणी है ना स्थलचर प्राणी है, आप जानते हैं? पानी में रहता है सांप? पानी के ऊपर रहता होगा, अंदर नहीं रहेगा। सांप जलचर प्राणी नहीं है। लेकिन वो कालिया कैसे रहता था फिर? तो दो प्रकार के कारण देते हैं। हो सकता है क्योंकि कालिया ना कोई साधारण नहीं था, देवता था, वो कोई देव संभव था, तो उनको जल स्तंभन विद्या आता था, जल को स्तंभीभूत करके उनका अंदर रहता था। नहीं तो इस काली हरत के अंदर एक टापू था, कई इस प्रकार से प्रमाण प्राप्त होता है, एक टापू था जिसमें उन्हें रहता था। तो पूरा हृदय के, क्योंकि महा बीस के ज्वाला से, वो बीस बहुत गर्म होता ना, गर्म से ठंडा पाने के लिए वो पानी के अंदर रहता था। लेकिन बाकी सारे परिवार लोग सब एक टापू में रहते थे, किनारे, हृदय के किनारे। तो कहते हैं कि वो कालिय सोया था उस समय में, भगवान ने गए सीधा जा करके देखे सोया हुआ है, उसका पैर में एक लात मारे। आप कभी एक्सपीरियंस किए कभी विषधर सर्प का पैर में थोड़ा कुचल दो? देखे तो नहीं होंगे, कभी देखे ही ना साहब? साधारण सर्प भी हो जिसका फनावी ना हो, वो भी पूंछ पर खड़ा हो जाएगा, पूंछ पर खड़ा हो जाएगा सीधा। सर्पों का गुस्सा तो देखने लायक है। और जो कालिया नाग था, इतनी बलशाली था, इतनी प्रभाव था, सोते हुए उनके पैर को कुचल दिया जाए तो तिल मिला उठा, इतने यंत्रणा हुआ, एक बार गुस्से में कंप मान करके उठा। उनके पत्नियां सब देखते, अरे बाप रे बाप। उनका पत्नियां देखे कि जो आए हैं, उनके पत्नियां सब भगवान की भक्ति भक्तिन थी, सारे कृष्ण की आराधना करती थी। लेकिन उनके पति बड़ा बदमाश था, वो नहीं उनको सपोर्ट करता था। पत्नी लोग पक्के डिवोटी थे और उनके पति नॉन डिवोटी था। ऐसे कई केस में से होता है, नॉन डिवोटी। वो बेचारे बड़े परेशान थे, हमारे पति अगर भक्त हो जाता कितना अच्छा होता, लेकिन क्या करे, कितने समझाए कुछ करे नहीं मानता, बदमाश, बड़ा विद्वेषी करता था। भगवान को प्रार्थना करते थे, हमारे पति इसे निकले क्या करे, हम उसे नहीं करने देते, बड़े मुश्किल से, बहुत रोते थे, प्रार्थना करते थे। तो जा करके वो जब देखे कि उनके मालिक, उनके उपास्य देव भगवान उनके घर में आए हैं, वो तो कृतकृत्य हो गए। लेकिन अब देखे कि भगवान ने आए उनके पति को मारे लात, तो बोले पति तो लात खाने के लायक है, कोई मत नहीं उसमें तो लेकिन वो जाते थे, बोले हम जाकर भगवान से थोड़ा मिले, थोड़ा प्रणाम करें। लेकिन जाते जाते उनके पति देव इतने गुस्सा में उठे, वो साइड होकर खड़े, पता नहीं क्या करेगा जा करके। उससे थोड़ा भगवान को प्रणाम करके आए, लेकिन कालिए इतने गुस्सा में उठा, जा करके गर्जना करके गया, जा करके सीधा भगवान ने तर रहे थे उनके पैर में जाकर डंसा। तो कोई आपके घर में कोई विशिष्ट भद्र व्यक्ति आए होंगे, आपसे बहुत सम्मानीय व्यक्ति आप आए होंगे, जिनके साथ आपके बड़े अच्छे मधुर संपर्क हो, बड़े सम्मानीय व्यक्ति आपके घर में आए होंगे, और आपके पिताजी जाकर के उनको एक दो लाठी चला दे, गाली दे, तो आप उनसे मिलेंगे शर्म के मारे? छिप जाएंगे, वो मिलेंगे नहीं, बोले जाने दो यार, संबंध खराब हो गया। तो ये हलवा नगर पत्नी नहीं निकले बेचारे, शर्म के मारे छिप गए, बोले कैसे जाएंगे उनके सामने, देखो हमारे पति क्या करते हैं, अरे ये भगवान है, जाकर उनको डंस रहा है, समझा ना, डंसा भगवान को उसमें तैरने लगे, और गुस्सा हो गया, अरे कुछ नहीं हो रहा उसका, उनके छाती पर भी डंसा, कई जगह पर। अरे अभी अभी आप सुने हैं, सारे गौ ग्वाल बाल सब विष के प्रभाव से पड़े थे, आंख देख दिए केवल सब विष खत्म हो गया। जिनका नजर मात्र से विष उतर जाए तो उनको विष प्रभाव करेगा, कैसे करेगा विष उनको प्रभाव? उस बेचारे को क्या ज्ञान था भगवत तत्व का, तो डंस रहा था अपने, भगवान को कुछ नहीं हो रहा था, तो उनके पीछे भाग रहा था, उनको ऐसे तैरा है, इधर से उधर, इधर से उधर, इसे तैरा है, वो बड़ा शरीर था, वो हजारों फण था, ऐसे घुमाए बाएं से डाएं, डाएं से बाएं, घुमाते घुमाते उनको परेशान कर दिए, परेशान कर दिए घुमाते घुमाते, थक गया तो एक जगह में खड़े होने लगा। खड़े होने लगा तो देखा कि फिर उनको परेशान कर रहा है, तो जंप करके गया, जा करके अपने शरीर से पूरे उनको फेट में ले लिया, उसको बोलता ना कुंडली, पूरे पैर से गले तक गोल 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 पूरे अपने शरीर को लिपट लिया, उनसे बिल्कुल कस करके जकड़ लिया, अपने पूरी ताकत लगाया। आप लोग का तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, कभी सांप किसी को इसे कुंडली में ले लेता ना, बहुत टाइट ताप लगाता है, तो वो तो सोचता था छोटा सा बालक है। जब उनको उनके पूछ में लात मारे भगवान ने, वो जब उठा तब ये सोच रहा था कौन हो सकता है, किसी के साहस है कि मेरे कमरे में आकर मेरे घर में घुस करके ऐसे काम करे, क्योंकि वो तो जानता था कि बड़े बड़े देवता लोग तंग थे, उनसे डरते थे, पूरे सृष्टि में उनके सामना करने वाले केवल डरता था गरुड़ जी को, बाकी किसी को नहीं डरता था, इतने महाबली था। तो बोला कौन, गरुड़ जी आए क्या? गरुड़ जी हो ना इंद्र हो ना कौन ऐसे महाअसुर होगा, कौन हो सकता जो इतने साहस से आया। जब उठ करके देखा कि कोई ना गरुड़ है ना इंद्र है ना कोई महाअसुर कोई राक्षस कोई नहीं, कि छोटा सा सलोने कोमल बालक है, बच्चा है, इतने सुंदर देखने के लिए वही बच्चा तैर रहा है। उनको तो गुस्सा और बढ़ गया, कोई बड़े आदमी होता तो ठीक है, ये छोटा सा बच्चे आकर इतने तंग करके रखता, तो क्रोध ज्यादा हो गया उनको, तो उनको ले लिया पूरे अपने फेट में, अपने शरीर में पूरा उनको बांध लिया, बांध करके पूरी ताकत ने उनको कसने लगा, बोला सारे हड्डी फड्डी पीस दूंगा, ग्राइंड कर दूंगा सारे, एक भी अगर देखेंगे वो जो बोन स्पेशलिस्ट मन है ना, क्या बोलते हैं उसको, हड्डी विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक्स वाला देखेंगे कोई जॉइंट फंड मिलेगा नहीं, सब पाउडर कर दूंगा हड्डी फड्डी देख, एक्सरे भी काम नहीं, कुछ नहीं करेगा, इतने ताकत लगाया, पूरे चरण से लेकर गले तक बांध दिया था, बांध करके ऊपर से फणकू करके पूरी ताकत से उनको दबा रहा था। भगवान भी निश्चेष्ट होकर पड़ गए थे, बिल्कुल ढिल्ले जैसे बिल्कुल अचेत सा हो गए, जैसे सारे ग्वाल बाल सब देख रहे थे दूर से कि उनका तैर रहा था, वो भाग रहा था, डांस रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन वो जब अपना चपेट में ले लिया, इस दृश्य जब देखे, केवल चपेट में ले लिया नहीं, वो भगवान भी बिल्कुल ढीले पड़ गए, निश्चेष्ट हो गए, जैसे इसे पड़े लुढ़क कर पड़े हुए इसे। उनको देखकर तो सारे जितने ग्वाल साथी थे सब चित्कार कर उठे, कृष्णा कृष्णा क्या हुआ, कैसे क्या हुआ करके चिल्लाए, धड़ाधड़ धड़ाधड़ सब दोबारा सेंसलेस हो गए, संज्ञाहीन होकर गिर पड़े, सारे चिल्ला कर गिर पड़े। उनका इन पकड़ आवाज सुन करके आसपास में गांव वाले जो खेती वेती कर रहे थे, आसपास कोई गांव तो होगा, गांव वाले लोग सब दौड़े, कई संख्या में दौड़ कर, क्या हुआ क्या हुआ, ये बच्चे क्यों आवाज कर रहे हैं इतना अर्थचित्कार, आकर देखे तो सबका सामने सांप के चपेट में लपेट में आकर के कृष्ण बिल्कुल ऐसे मूर्छित बत पड़े हुए, वो भी चित्कार करके रोने लगे, वो भी सब संज्ञान होकर पढ़ने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्यों, ये बालक तो चलो उन्हीं के साथ ही थे, उनको दुख हुआ, बाकी सारे गांव वाले क्यों, बोले वृंदावन के जितने नागरिक हैं उन सबका जीवन प्राण आत्मा घर परिवार सर्वस्व कृष्ण ही थे, कुछ नहीं थे, सब कुछ पूर्ण समर्पित था कृष्ण के प्रति। तो इस प्रकार जब वो कृष्ण को देखे कि सांप के चपेट में है और बिल्कुल मृत्युवत पड़े हुए हैं, तो कैसे वो धीरज धारण करेंगे, वो चित्कार करके वो भी सब संज्ञाहीन होकर पड़ गए। लाखों संख्या में गाय थे, अभी भगवान की दृष्टि से जीवित हुए थे, गाय भी सब देखे, देख करके गाय की जो आवाज करते हैं हम बारडी के, पूछ उठा करके कान उठा करके दौड़ गए जमुना किनारे। जब देख लिए आप आंख से धार धार आंसू, गायों का आंख से धार धार आंसू बहता था, वैसे ही पूछ खड़ा करके कान उठा करके पुतले की भांति एक टक नजर लगा करके कृष्ण के मुख कमल को कृष्ण ऐसे मुरझाकर पड़े हैं, सब खड़े हैं। शरीर में प्राण है कि नहीं पता नहीं, केवल आंख से आंसू झर रहा है, वहीं खड़े हैं। बाकी तो कोई जीव जंतु थे नहीं, क्योंकि मर जाते, कोई आते नहीं थे डर के मारे, गाय थे, बच्चे थे और कुछ आदमी गांव से दौड़ कर आए, उनका ही हाल हुआ। इस अवस्था में कृष्ण पड़े थे। आप बोलते हैं कृष्ण ऐसे क्यों हो गए, कृष्ण जब कृष्ण ही है, काली उनके सामने क्या है भाई, क्यों पड़े थे? कृष्ण सोच रहे थे काली का अपने बल पर बहुत गर्व है, मैं इतनी पावरफुल हूं, इतनी शक्तिशाली हूं, थोड़ा पूरे ताकतवर लगाने दो। उस डांस करके देखा तो कुछ काम नहीं किया, चोट मार के काम नहीं किया, तो आपने शरीर में इतना बल है उसको जकड़ करके पीस पास कर दूंगा, एक बार मार दूंगा, तो इसलिए ठीक है ये शक्ति भी लगा दे। क्यों, डसने का शक्ति तो पहले मार चुका था फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में ये उनका जो ताकत है उसको भी थोड़ा करने दो, पूरी ताकत लगाने दो। तो भगवान इसलिए ढीला छोड़ दिया, बोले आप लगाने दो पूरी ताकत, जानबूझ करके इसे ढीले छोड़ दिए थे उनको। और इस दशा में जब कृष्ण इस हृदय में थे, वहां ब्रज में क्या हो रहा था कि बलराम जी थे बड़े, उनका पूजा वूजा हो रहा था, फिस्ट फिस्ट चल रहा था, हठात दोपहर के समय में, क्योंकि कोई ये दारुण दुखद संवाद उनके परिवार ब्रज में देने के लिए कोई नहीं था, कोई पशु पक्षी नहीं थे, सारे गाय इधर पड़ गए सब इसी हालत में, इसे खबर कौन देगा घर में लेकर के, इसे अवस्था हो चुका है करके, कोई नहीं है, जो कोई नहीं संवाद देने के लिए, तो देवता लोक ने देख रहे थे ऊपर से। देवता लोक ने सोचे नहीं नहीं अभी हमको कुछ सेवा खबर देना चाहिए ला करके ब्रज में, तो कैसे खबर देंगे, अलख्य में रह करके पूरे ब्रज में बहुत प्रकार अपशकुन सृष्टि करने लगे। अपशकुन समझते ना, अशुभ चिन्ह, जैसे पुरुषों का बाम अंग फिड़कना, सारे बाएं आंख बाएं कान सब फिड़कना, समझते ना, पुरुषों के बाएं तरफ और स्त्रियों के दाहिने तरफ अगर फिड़केगा वो अशुभ लक्षण है, उल्टा होगा तो शुभ लक्षण है। तो इसे कई प्रकार के अशुभ शकुन होता है, नाना प्रकार के अशुभ शकुन देखने लगे। कोई देखा घर में देवमूर्ति से आंसू बह रहा है, सारे कुत्ते झुंड झुंड होकर मुंह ऊपर कटके रो रो रहे हैं, ताल लय लगा करके रोते हैं रागिणी के साथ, और कोई जाते हैं बिल्ली आकर रास्ता में हमेशा अवरोध करता है, कोई कलश रखा था वो गिर पड़ा है, ऐसे नाना प्रकार के अपशकुन जहां देखे था आकाश से उल्कापात हुआ, ऐसे हुआ, और सब प्रकार के सारे ब्रजवासी व्यथित हो गए, घर घर में सभी के घर में इस प्रकार शकुन दिखने लगे। सब बड़े विस्मित चित्त होकर के क्या हुआ, क्या हो रहा है, बहुत बड़े विपद क्या होने आने वाला है, सब घर बाड़ी छोड़कर दौड़कर कहां जाए, शरण तक नंद भवन है, सारे नंद भवन इकट्ठा हुए, नंद बाबा के भी वही हाल है, नंद उपनंद सुनंद महानंद सभी सभी का सामने इस महा अपशकुन दिखाई पड़ रहा है। सब बड़े चिंतित है, चिंतित होकर के क्या किया, लेकिन सभी का जीवन धन सबका प्राण धन तो का नहीं है, तो सबका चिंता हुआ कि आज कान्हू अपने भाई के बिना गया है, बड़े भाई उनकी देखभाल करता था, आज राम नहीं गया, अकेला कान्हू गया है, तो जरूर कुछ गड़बड़ी हुआ होगा, हमेशा बदमाशी करता है, इससे तो बहुत चंचल है, कुछ कर लिया होगा, कुछ विपत्ति में पड़ा होगा। उस मन में विचार करके सारे घर से बाहर निकल पड़े थे, पूरे नंद भवन में आंगन में लाखों सारे ब्रजवासी इकट्ठा हो गए, सब रो रहे हैं, चिंतित है, और चिंतित होकर के सब निकलने लगे। महानंद भी बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े सब लाठी लकोट लेकर के निकल पड़े, लेकिन क्या पता कहां गए आज गाय लेकर के, कैसे पता चला कहां गए, कहां गए उन्होंने। तो उनको पता लगाने के लिए भागवत में लिखा है गवांग गति, देखे कि लाखों संख्या में गाय है ना, गायों के पद चिन्ह, इतने सारे गाय की पद चिन्ह जहां गए बोले इसी दिशा में गए हैं। और केवल गाय के पद चिन्ह, गाय तो डेली डेली चरते हैं, ये काल का फुटप्रिंट होगा, आज कह करके क्या पता। इस गाय के पद चिन्ह के बीच में कृष्ण के पद चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए इसी प्रकार के कृष्ण के पद चिन्ह के पद अनुसरण करते सारे ब्रजवासी जिनके जीवन धन है कृष्ण, उनको ढूंढने के लिए, पता लगाने के लिए क्या हुआ, इसे अर्थ चित्कार करके निकल पड़े हैं। जिनका सब कुछ है कृष्ण, उनका इस प्रकार जो कृष्ण के लिए ढूंढने के लिए, उनके पास जाने के लिए जो प्रयास, यही प्रयास को कहते हैं भक्ति। ऐ राधा कृष्ण प्राण मुरल,
राधा कृष्ण प्रण मोरो युगल किशो, राधा युगल जीवने मराने रतन बेटी वो सब दूचाना रतन बे राधा कृष्ण प्रण मोरो युगल किशोर राधा कृष्ण प्रण मोरो युगल किशोर श्याम गोरी अंगे दिवो चंदन रगंदा श्याम गो चमरा दू लाबो कबे हरि मुख चंद्र चमरा दू लाबो हरि राधा कृष्ण प्रण मोरो युगल किशोर राधा कृष्ण प्रण युगल की गथिया माला तीर माला दीवा तो हर गाले गथिया अधर तुलिया दिवा कर्पूर तंबूले अधर तुलिया दिवा कर्पूर राधा कृष्ण प्रण मोरो युगल किशोर राधा कृष्ण प्रण मोरो ललिता विशाखा आदि ललिता श्री कृष्ण चैतन्य ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ದಾಸರನು ದಾಸ ವಿಲಾಸ ಕರೆ ನರುತಮ ದಾಸ ಸೇವಾ ವಿಲಾಸ ಕರೆ ನರುತಮ ದಾಸ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಮೋ ಯುಗಲ ಕಿಶೋ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣ ಜೀವನೆ ಮರಾನೆ ಗತಿ ಆರ ನಾಹಿ ಜೀವನೆ ಮರಾನೆ ಗತಿ ಆರ ನಾಹಿ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಮೋ ಯುಗಲ ಕಿಶೋ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಮೋ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಮೋ ಯುಗಲ ಕಿಶೋ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಮೋ ಯುಗಲ ಕಿಶೋ ಯುಗಲ ಕಿಶೋ ಯುಗಲ ಕಿಶೋ
ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರೇ ಬ್ರಜವಾಸಿ ಜನ್ ಜಿತ್ನೆ ಪುರುಷ ಜಿತ್ನೆ ಸ್ತ್ರೀ ಗೋಪ ಗೋಪಿ ಸಭಿ ಕಾ ಜೀವನ ಸರ್ವಸ್ವ ಕೃಷ್ಣ ಥೇ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಸಾಬ್ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ವೇಷಣ ಮೇ ಭಾಗನೆ ಲಗೆ ಬಳರಾಮ್ ಜಿ ಘರ್ ಮೇ ಥೇ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಭಿ ಚಿಂತಿತ ವ್ಯಥಿತ ಲೇಕಿನ್ ಸಬ್ ದೇಖತೆ ಹೈ ರಾಮ್ ಹಸ್ ರಹಾ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಕೋಯಿ ಚಿಂತಾ ನಹೀ ಕಿ ದಿದಾ ನಹೀ उन्हीं के मुंह को देख करके सब भरोसा रखते हैं कि ये उनके अग्रज है, अगर वो दुखी नहीं है तो वो जानता होगा कृष्ण के, उन्हीं के भरोसा में थोड़ा सा आशा रखें सब। तो बलराम जी भी साथ साथ चले चल रहे हैं, धीरे धीरे गाय और पदचिन्ह को देख करके, गायों के और भगवान के पदचिन्ह देखते हुए बड़े, थोड़े देर जाने के बाद पता चला कि अरे तो वही दिशा में जा रहा है जहां कालिये की रथ है। अरे जैसे उसी दिशा पर चिन्ह जा रहा है, तब सभी का तो हालत खराब होने लगा, सब रोना शुरू कर दिए, सब रोना सना शुरू कर दिए और जल्दी जोर जोर से भागने लगे। जो जितने जोर हो सके दौड़ के गए, क्या सचमुच यहीं गए हैं? अब जा करके दूर से ही आप शरीर पहुंचने से पहले, नजर तो पहले पहुंच जाता ना, शरीर पहुंचने से पहले नजर पहले पहुंच गया, देखे कि इस महा सर्प कालिय के चपेट में उनके कुंडल के अंदर कृष्ण निश्चिष्ट पड़े हुए हैं। आहा, ये महादारुण हृदय विदारक दृश्य को देख करके जो कृष्ण कातर ब्रजवासी जन तुरंत छट छट करके जहां तहां गिर पड़े, हा कृष्ण चित्कार करके। बाकी जो गोपियां मातृस्थानीय गोपी रोहिणी जसोदा आदि, वो उनको तो रो रो कर उनको दिखाई नहीं पड़ता, थोड़ा थोड़ा नजदीक गए। अब जा करके देखे कृष्ण इसी हालत में, तो चित्कार कर ले कृष्ण करके सीधा दौड़ रहे थे कूद जाने के लिए, काली हृदय में स्वयं विसर्जन के लिए कूदते थे, कूद जाने के लिए तैयार होते थे। तो बलराम जी पूरी प्रयास करके, कोई एक दो तो है नहीं, हजारों संख्या में है। तो बलराम जी यहां आगे जा करके आपने को इतने एक्सपांड कर लिए, वो इतने बलराम हो गए, हो करके बड़े मुश्किल से किसी को बोल करके, किसी को हाथ में पकड़ करके, खींच करके, सामने से पीछे से सबको रोक कर रखे, अकेले ये बलराम है, सबको हैंडल किए। नहीं 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 कृष्ण ठीक है, सबको रोक कर रखे, ये तो सारे कूद के मरते, सब काली हद में कूद जाते जा करके। कृष्ण इस स्थिति में है तो कैसे संभाल कर रखे, बड़े मुश्किल से किसको संभाल कर रखे, जिसका नजर एक बार पड़ा तो एक बार देख लिया। जब बलराम नहीं छोड़ते हैं हद में कूदने के लिए, कृष्ण के पास जाने के लिए, तो वहीं पे गिर पड़े, सब मूर्ति जैसे पुतली जैसा होकर के खड़े हो गए, निश्चेष्ट होकर के। तो बलराम जी ने बड़े ताकत लगाकर रोक रोक कर बोले दिस इज टू मच, तो वहीं से मुंह मोड़ करके कृष्ण की ओर देखे, बोले कान्हू बहुत हो गया, अब मेरा बहुत परिश्रम हो रहा है, आपको रुकने के लिए सब रुका नहीं जा सका, जल्दी खेल खत्म करो। क्या इतने देर तक के सांप के ऊपर, इतने हमेशा अनंत साई हो, सांप के ऊपर सोते सोते आपका कितने समय बीता, फिर भी ये सांप के ऊपर सोते, ये कौन सा सांप है उनके समान में, है ना। नहीं संताकारंग भुजग सयनंग पद्मनाभंग सुरेशंग विश्वाधारंग गगन सदृशंग मेघवन्नंग सुवांग, बोलते आप संताकारंग भुजग सयनंग, आपके नामित भुजग सयन, आपका असली ओरिजिनल बेड, तो आपका जो बिस्तर है, आपका जो बेडरूम है, उसमें तो है ही सांप ही है, वही आपका बेड है नित्य, फिर भी ये एक छोटा सा सांप के चपेट में आपको अच्छा लगता है सुनने के लिए ज्यादा समय। हाँ, ये महासर्प जो है आनंद शेष की सज्जा पर जो सोने वाले, ये काली है कि तो बोले तो जल्दी आ जाओ खेल खत्म करो। तो भगवान ने देखे कि बहुत हो गया, काली ने अपने तारे सारे ताकत लगा करके कुछ नहीं कर पा रहा है, वो भी थक गया है, और बलराम जी भी बुला रहे हैं, और सारे ब्रजवासी जन भी, अब मैं ज़्यादा लेट करूंगा, सारे जाके काली हृदय में कूद पड़ेंगे, उनको भी बचाना होगा, तो बहुत हो गया, तब उनको जिलाना है। तो धीरे से अपने शरीर को थोड़ा फुलाने लगे, जैसे थोड़ा बढ़ाने लगे, काली जो पूरे कस करके जकड़ के रखा था उनको, उनको महसूस हुआ कि मेरे सारे शरीर अंग टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, टूट जाएगा सारे, शायद लगते सारे टूट जाएगा, डर के मारे सहन नहीं कर पाया, इतने प्रेशर ढीला कर दिया शरीर, ढीला करके सारे राउंड स्लाक कर दिया, ढीला करके निकल गया, छोड़ दिया उनको, छोड़ दिया लेकिन गुस्सा तो और बढ़ गया। छोड़ दिया कृष्ण, फिर तैरने लगे उनके पीछे भागने लगा, तो तैरते जैसे पीछे आ रहा था, भगवान ने उठा करके एक थप्पड़ मार देते उसको, एक दो थप्पड़ मारे उनको, इतनी चोट लगा, तो अभी कृष्ण जी सामने आते थे वो ऐसे करता था, पीछे हटता था, जैसे पीछे हटा, एक बार भगवान ने इतनी चंचल गति से बाएं हाथ से उसको पकड़ करके उसके मस्तक को चढ़ गए उसके ऊपर। पूरे सृष्टि के लिए आपने संभावना से परे के एक दृश्य है। काल भी बढ़िया ध्यान से यहां हुआ था, आज भी बोलते होगा करके, आप भी कितने बार ध्यान से देखे होंगे, कोई कितने सुपर डांसर क्यों ना हो, अगर स्टेज ठीक ना हो डांस कर देगा, कितने बढ़िया डांसर हो। आप देखिए स्टेज कैसा चुने भगवान ने नाच करने के लिए, कैसा स्टेज है, सर्प के सिर के ऊपर, ये उनका मंडप है, नृत्य मंच है, और वो स्टेज जो हमेशा चाहता था कि उनको मारने के लिए, उस सौ सकड़ों फिर हजारों उनका मस्तक था, एक मस्तक के ऊपर चढ़े दूसरे मस्तक उठकर उनको डसना चाहता था, उनको नीचे गिराना चाहता था, फेंक देना चाहता था, वो स्टेज ही खुद उठाकर फेंकना चाहेगा, ऐसे स्टेज में डांस कर सकते हैं? जो स्टेज खुद उठता है, इधर उधर भागता है, आपको चढ़ प्रचल हो रहा है, उठता है पड़ता है, आपको मारता है, गिराना चाहता है स्टेज ही, ऐसे स्टेज चुने नाचने के लिए, है नहीं कमाल। और स्टेज में भाई लाइटिंग होना चाहिए ना डांस के साथ, लाइटिंग तो सांप के ऊपर नागराग मणि, चमकीले मणि, मणि के साथ भगवान के चरण कमल की जो लालिमा, उसके साथ मणि के जो चमक, और भगवान ने पद प्रहार कर रहे थे, इसे पीट रहे थे मस्तक के ऊपर, सर फूट जाता था उसका, ब्लड निकल रहा था, ब्लड के साथ उनके चरण और जैसे अलता लग जाए, अलता होता ना लाल लाल रंग लग जाए, लाल रंग के साथ मणि के लाइट अंदर से स्टेज से नीचे से लाइट फिट हुआ है, बिफिटिंग स्टेज है, नीचे से सब सब सर के ऊपर मणि है और मणि से लाइट आ रहा है, वो बिल्कुल कलरफुल है, उसका ऊपर डांस शुरू किए। अखिल जगत के जितने नृत्य करने वाले सारे नृत्य गुरु के परम आचार्य हैं भगवान नटवर नागर, डांस तो सब उन्हीं से आया, वही असली नृत्य गुरु हैं। उन्होंने नाचने लगे तो स्टेज भी कैसा है अद्भुत, ऐसे मतलब सृष्टि के परे किस दृश्य है, एक महासर्प के मस्तक के ऊपर, फण के ऊपर वो अपने नृत्य मंच चुने, और जबकि वो मस्तक उठाता था गुस्सा में काटने के लिए, जिस मस्तक उठाए उस मस्तक के ऊपर ताल के अनुसार पद प्रहार करे, नृत्य विन्यास पद विन्यास करे, और वो भी, और बेचारे फण उठाए दब जाए, इस फण उठाए उसमें दबे, उनके फण उठाना और उनका पद विन्यास, इतने ताल के अनुसार नाचने लगे कि कहते हैं कि गरुड़ जी, नारद जी और बाकी इंद्र, चंद्र और जितने गंधर्वाएं थे, जितने चारणगण थे, सब अपने अपने वाद्य ले लिए। बोले कहा कि उससे सब म्यूजिक है पड़ा है, जब भगवान नाचे और नहीं बजे तो बेकार है सारे, सारे म्यूजिशियन जो अपने कुछ मानते थे बजाने वाला, सब आगे बजाने के लिए, लेकिन ध्यान देने की बात है, यहाँ कितने भी नाच करने वाले आते हैं ताल के अनुसार वो नाचते हैं, वो फॉलो करते हैं, बाजा जो बजता है जिस ताल में, इस ताल से पैर चलाते हैं, है ना, नहीं लेकिन यहां उल्टा था, भगवान के पैर चले इसी के अनुसार ताल चलेगा, वाद्य चलेगा, क्योंकि वाद्य बाद में आया ना, यहां पहले कैसेट चलता है, बार में नाचने वाले चलते हैं, नहीं कैसेट बाद में चला उनकी पद के अनुसार जो म्यूजिक बन रहा है, ताल बन रहा है उनके पद विन्यास के अनुसार, पहले वो नहीं बन सकता, वो जैसे पैर रखे इसके अनुसार ताल चले, इसके अनुसार वाद्य बजे, उसको फॉलो करके। तो इस प्रकार नाचने लगे, जो स्टेज हमेशा उठ पड़ हो रहा है, उसके अंदर फुतकार भी कर रहा है, थोड़ा म्यूजिक भी हो रहा है और लाइटिंग भी चल रहा है, एक लाइट हमेशा जाए तो चले, लाइटिंग भी डांस कर रहा है, डांसिंग अप डाउन लाइट, और उसमें ब्लड भी उजर रहा है, और उसके साथ भगवान के नाच हो रहा है, क्या बिफिटिंग स्टेज फिटिंग डांस। ऐसे डांस को देखने के लिए 14 भुवन में समस्त देव गंधर्व किन्नर सब आकर देखने लगे, क्या अद्भुत नृत्य है। भगवान शंकर जो स्वयं तांडव नृत्य कर रही है वो भी आश्चर्य होकर देखने के लिए, मैं तो नाचता हूं तांडव, निकली सांप के हुड के ऊपर, मैं नहीं नाचा, ये तो अद्भुत नाच कर नाचने वाली है, इससे नाच कर रहे हैं इसे नृत्य करने लगे कि सारे आश्चर्यचकित होकर दे रहे थे, इस नृत्य को देख करके, जैसे उनके स्टेज के ऊपर आ गए भगवान, तो बलराम जी भी घूमकर खड़े हो गए, सब बोले अभी तो देखो, अब क्यों कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे, अब देखो तो सही सीन, देखो स्टेज के ऊपर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है डांस, कोई जाने के लिए मन नहीं कर रहा है, सब डांस देखने लगे सब। गोप गोपी से लेकर के सारे गोप गोपी सब देख रहे हैं कृष्ण नाच रहे, अब तो आनंद से नाच रहे, अब किसको भय क्यों होगा, क्यों रोएंगे, अद्भुत नृत्य चल रहा है। घंटों तक नृत्य चला, कालिया का जितने ताकत था ऊपर सर में पैर में पद प्रहार करते करते अपना नाच और उनका तो हाल खराब, वो बेचारे नाच रहे। सोचिए जिन चरण को छूना प्राप्त करना तो दूर बात है, ब्रह्मा तक भी जिन चरण को बड़े सुत पुत हो करके पवित्र हो करके पूरे ध्यान लगा करके कई लंबे समय तक आपने चिंतन में ध्यान में अपने हृदय में उतार नहीं पाते, जिस चरण को इस चरण साक्षात जिनके सर के ऊपर आकर के नाचे, कितनी बड़ी बात है, वो कितने कृतकृत्य धन्य हो जाए, खुश हो जाना चाहिए ना। नहीं, लेकिन वो उनको उठ के मारना चाहते, उसे गिराना चाहता है। अद्भुत बात है, इतने दुर्लभ पद जिसके सर में आकर लग रहा है वो उनको मारना चाहता है, हिंसता है, लेकिन वो गिराना चाहते, वो गिरते थोड़ी है, वो तो नृत्य गुरु है, तो जितने नाचेगा वो भी इतने नाचते हैं। तो इसे नृत्य किए कि सारे फन, जितने फन था उनके सबसे चौड़ा चौड़ा मोटे काले काले फन थे, सो पूरे बीस में भरा हुआ था वो फन, सबसे मोटे मोटे बड़े बड़े ऊपर के फन थे, और बाकी नीचे नीचे छोटे छोटे फन थे। वो ऊपर के फनों को सब पैर से कूद कूद करके पद प्रहार करके सारे फोड़ दिए, सारे ब्लड निकले, सब फट गए, टूट फूट गए, सारे सब टूट फूट गए। बेचारे अभी आंख से आंग निकल रहा है, मुख से गरम गरम बिसेली श्वास, सारे विष निकल रहा है, उसके साथ ब्लड भी निकल रहा है, इस प्रकार हालत। बेचारे बहुत ज्यादा समय नहीं लिया, कुछ समय में बिल्कुल मुमूर्ष अवस्था को आ गया, मृतवत हो गया, जिसे मरने अवस्था से हो गया, सारे उनका दम्भ गर्म गारिमा सब टूट फूट गया, खत्म। अब धीरे धीरे सोचने लगा कि नहीं, ये जो लड़का नाच रहा है ये कोई लड़का नहीं है, ये असाधारण पुरुष है, मैं जिसको सामान्य समझ रहा था ये सामान्य नहीं, असामान्य लड़का है, मेरा हाल खराब कर दिया, मैं तो मर जाऊंगा अभी, मारी डाला, मैं हर प्रकार से मेरा बल प्रयोग कर दिया उनके ऊपर, पूरा विष दंत लगा करके डांटा, डांसा उनको, डसा उनको, मेरे चपेट में ले करके कसा, और जो जो प्रकार से मैं अटैक करना था सब कुछ कर लिया, लेकिन ये तो मुझे स्टेज बनाकर नाचने लगा मेरे सर के ऊपर, नाच नाच करके मुझे बेहाल कर दिया है। तो ऐसे भगवान की जो नृत्य है, इस नृत्य के बारे में कुछ बोलना चाहता है क्या?
जल्दी करो, टाइम नहीं।
वृंदावन कुंज भवन, वृंदावन कुंज भवन, वृंदावन कुंज भवन, वृंदावन कुंज भवन, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, नाचत गिरिधारी, वृंदावन कुंज भवन, वृंदावन कुंज भवन। धर 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 मुरली अधर, धर 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 मुरली अधर, भर भर स्वर मधुर मधुर, भर भर स्वर मधुर मधुर, भर भर स्वर मधुर मधुर, कर कर नटवर स्वरूपा, कर कर नटवर स्वरूप सुंदर सुखकारी सुंदर सुखकारी वृंदावन कुंज भवन वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरी धारी नाचत गिरिधारी नाचत गिरिधारी नाचत गिरिधारी वृंदावन कुंज भवन घन 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 बाजत ताल घन 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 बाजत ताल घन 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 बाजत ताल ठुम 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 चलत चाल ठुम 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 चलत चाल चखन छनन 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 चखन छनन 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 नूपुर ध्वनि प्यारी नूपुर ध्वनि प्यारी वृंदावन कुंज भवन वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरिधारी वृंदावन कुंज भवन गिर 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 करत गान गिर 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 करत गान गमर सनि धनि सनि समर पम पनि धनि सा गमर सा निजा रे निजा निप गम रे सा निदा निजा निदा निजा गिर 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 करत गान गिर 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 करत गान फिर 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 लेत तान गिर 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 करत गान फिर 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 लेत तान फिर 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 लेत तान मिल 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 रचन रास मिल 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 रचन रास संग गोपी नारी संग गोपी नारी वृंदावन कुंज भवन वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरिधारी नाचत गिरिधारी वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरिधारी गिरिधारी गिरिधारी
तो इस प्रकार भगवान ने नाच नाच करके कालिया के दमन किए कालिया को उनके गर्भ दंभ नाश किए तो जब उन्होंने बिल्कुल समर्पित भाव में आ चुका था तब इसी सुजोग को लेकर के उनके पत्नियां आ गई। अब आकर के जब दूर से देखे पहले तो देख रहे थे कि उचित है इतने बदमाश पति हमारा था कभी हमारा साथ नहीं देता था भक्ति नहीं करता था अब खूब मार पड़ा है लेकिन जब देखे कि उनके मुंह से रक्त उगल रहा है मर ना जाए तो दौड़ करके आए आपने अपने बच्चों को साथ में पकड़ कर ले आया कि भगवान को दया आ जाए कम से कम देखने की छोटे छोटे शिशुओं को साथ में लेकर के आए वो आ करके हाथ जोड़ करके खड़े होकर प्रार्थना करने लगे भगवान को प्रभु जो हो गया वो तो महा अपराधी है हम जानते हैं अब बिल्कुल उनका दंभ जा चुका है गर्भ जा चुका है कृपा करके उनके प्राणदान दीजिए हम आपको यही भिक्षा मांगते हैं उनको प्राणदान दीजिए क्योंकि अभी तो भक्त बन चुका है अभी साधु बन गया उन्होंने, आपके चरण प्रहार से बड़े दुष्ट से दुष्ट भी साधु हो जाते हैं, आप कृपा करके उनको प्राणदान दीजिए तो हम कम से कम पति सेवा करेंगे। अभी तक तो उनके ऊपर गुस्सा कर रहे थे, गाली देते थे मन में, लेकिन अभी तो भक्त बन गया, अब तो उनका सेवा करेंगे, है ना। नहीं तो इस प्रकार प्राण भिक्षा मांगने लगे, तो भगवान ने इन नाग पत्नियों की जो प्रार्थना है, बड़ी लंबी प्रार्थना है, वो भगवान के वास्तविक तत्व ज्ञाता थे, उन्होंने प्रार्थना किए और भगवान ने देखे कि काली बिल्कुल साधु बन चुका था, तो इतने बनकर के खड़े हो गए काली के मुख्य फण के ऊपर, जो इतने भार प्रहार कर रहे थे अभी रुई से भी ज्यादा हल्का बन करके नित्य ठाणी में खड़े हो गए भगवान ने। अब कालिया कुछ महसूस नहीं हो रहा था, इतने हल्के हो गए। तो कालिया ने घूम करके फिर भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करके उन्होंने बोलने लगा, कालियन का जो स्टेटमेंट है वो लगता है कि भागवत में एक जगह में ऐसे स्टेटमेंट है जो भगवान ने निरुत्तर हो गए, कुछ उत्तर नहीं दे पाए वो जो बोला। कालिया ने बोला, हे प्रभु, मैं तो सर्प हूं, आप प्रभु है, सृष्टिकर्ता है ना। नहीं बोले हाँ हूं। दुनिया में जितने प्रकार के प्राणी है सभी में जो स्वभाव गुण कर्म का कंट्रोल कौन करता है? आप करते ना, मैं करता हूं, आप करते ना। जिनके अंदर जो जो जैसे आदतें हैं आप दिए ना सबको। भगवान गीता में कहते हैं, बुद्धिर ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्यम दमह समह सुखं दुखं भवो भाव भयं च अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानं मत्तैव पृथग्विधाः। इस सारे समस्त प्रकार भाव मेरे से ही निकला है, मैं सबको देता हूं, प्रमाणित कर दे भगवान स्वयं अपने मुख से, सिमुख से बोले कि सारे मूड स्वभाव मैं ही देता हूं। बोले आप ही? हाँ हाँ, मैं देता हूं। तो मुझे इस सर्प के शरीर आपकी कृपा से तो मिला ना, आप ही ने दिए महासर्प के शरीर। इतने घमंड, इतने कूट कपट तमगुण और स्वभाव, तमगुण के अनुसार स्वभाव आप ही ने दिए ना कृपा करके। तो मैं सर्प के शरीर, सर्प जैसा गुण, सर्प जैसा स्वभाव, ऐसे कपटता दुष्टता, तो मैं इसी के अनुरूप आचरण किया तो मेरा दोष क्या है? जो आपने मुझे ड्यूटी दिया, सारे समन दिया, सारे सब कुछ दिया और उसमें एक्शन किया तो मेरा क्या दोष है? भगवान ने चुप हो गए, बोले अभी आप मुझे दंड दे या पुरुष, आपकी इच्छा, जो करे आप मालिक है, लेकिन बात यही है जो आपने दिया मैं इसी के अनुसार आचरण किया, मैं क्या करूं? मेरे स्वभाव में सर्प हूं, सर्प जैसा स्वभाव। भगवान कुछ बोले नहीं, बोले कालिया नहीं ये सर, बोले बहुत हो गया तेरा वकीलाती, अभी नहीं सुनने वाला हूं, एक काम करो ना, आज्ञा दीजिए ना, सारे परिवार लेकर के तुरंत यहां से गेट आउट निकलो, आप जाओ नागलोक में, यहां नहीं रहना। ना सर, आपके जो कैरियर है ना उन्हीं के भय से तो यहां आकर मैं बैठा हूं, वो निकलूंगा तो खा जाएगा, आप मार देते, मारे नहीं, आधा मार कर जीवन छोड़ देते, वो खा जाएगा मुझे, नहीं उसको भय नहीं। क्यों? अभी मैंने तेरे मस्तक पर नाच किया, मेरे मस्तक नहीं मिटता, स्टाम्प बनकर लग जाएगा आपके सर में, मेरे चरण का छाप स्टाम्प तेरे सर के ऊपर रहा तो गरुड़ जी देखेगा तो प्रणाम करेगा, आपको साथ द्वेष नहीं करेगा, तो इसलिए जाओ, कोई भी तुझे द्वेष नहीं करेंगे, निधर जाकर रहो। तो गरुड़ जी कालिय को सवन से भगवान ने विदा कर दिए, जमुना जी से रमणक द्वीप की भेज दी है। अभी प्रश्न उठता मन में कि कालिय के इंसा कौन सा गुण कर्म था, कौन सा जप तप व्रत साधन था जिसके कारण बिन बुलाए भगवान जबरदस्ती जाकर के इसके सर के ऊपर चरण थापे। जिस चरण को बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र देवेंद्र तक प्राप्त नहीं कर पाते, उनको ये जबरदस्ती जाकर थापे भाई, क्या था वजह उनका? तो कहते हैं कि कालिया ने भले सुकर्म हो दुष्कर्म हो कुछ भी करो, मार खाया तो गरुड़ जी से खाया था सबसे पहले, गुंडागर्दी कर रहा था, उग्रवादी था, किससे थप्पड़ खाया? गरुड़ जी से। तो कहते हैं कि अगर मार भी खाओ थप्पड़ खाओ भक्तों से तब भी अच्छा है, वो भलाई है। और आ करके भाग करके कहां शरण लिया? ब्रज में, वृंदावन में, जमुना जी के गोद में। कोई जमुना जी तो भगवान की सहधर्मिणी है, वहां पर ब्रज में कोई आकर के शरण ले, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस तद धाम वृंदावनम, जैसे भगवान ब्रजेश तनय भी आराध्य है ऐसे उनका धाम भी इसी प्रकार आराध्य है। तो उनका धाम के शरण में लेना मतलब भगवान की ही शरण में जाना। वो दुष्ट भले हो, दुष्ट स्वभाव को लेकर भी उन्होंने भगवत शरण में आया, भगवत भक्तों की शरण में आया, वहीं आकर अनेक दिन ही रुका। आपने स्वभाव जैसा था ऐसे कर्म कर रहा था, विष था तो क्या करेगा, विष को प्रभाव दिखा रहा था, लेकिन यही शरण में इतना लंबे समय रहा तो इसलिए भगवान उसको मारे नहीं। जितने असुरों को भगवान मार दिए लेकिन कालिया को नहीं मारे, बल्कि उनके सर पे पदच्छप पैर का स्टाम्प लगाकर भेज दिए सदा के लिए निर्भय करके। यही था कारण। अगर भक्तों के साथ शत्रुता भी करो, द्वेष भी करो, झगड़ा भी करो तब भी कल्याण है, लेकिन अभक्तों के साथ कुछ भी करो, मित्रता भी करो तब भी अकल्याण है, शत्रुता तो कहना ही नहीं है ना। नहीं, भगवान ने कहते हैं, ब्रह्मा जी ने भगवान के गुण में, यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सभ्य भावे सचिंत्य तस्य सदृशिं तनुमापुरेते गोविंदमादि पुरुषम चरण तमहं भजामि। चाहे क्रोध से, काम से, सहज से, यम क्रोध काम सहज प्रणय से, भीति से, वात्सल्य मोह गुरु गौरव सभ्य भावे, किसी प्रकार की भावना से, किसी प्रकार की रस से, संबंध से भगवान से, भक्तों से जुड़ जाओ तो आपका कल्याण तो होगा ही, वही उधार कर डालेगा किसी प्रकार से। वो एब्सोल्यूट है, उनके लिए कुछ नहीं। तो भगवान और भगवान के जनों के साथ जेन केन प्रकार ने संबंध रखना चाहिए। तो कालिया का यद्यपि महासर्प महाखल था, लेकिन ब्रज के शरण में आकर के उनका इस प्रकार उद्धार हुआ, भगवत चरण प्राप्ति हुआ, उन्होंने सपरिवार अपने रमणक द्वीप में गया। भगवान को जब विदाई उत्सव कर रहे थे, भगवान बोले चलो यहां से, तो नागपत्नियों ने कालिया के साथ में लेकर के भगवान को प्रार्थना किए, प्रभु एक बार जब आए हैं केवल मार पिटाई किए थे, एक बार हमें घर में ही पधारे। तो भगवान उनके घर में पधारे कालिया के क्वार्टर में। जो गए तो उनको सारे घर में जो धन रत्न माल मता था सब जाकर दिए उनको, बहुत सारे मणि धन रत्न जो कालिया ने रखा था सब लाके भेंट दिए उनको, उनको सुंदर मणियों की माला पहनाए, बहुत सारे भेंट माला दे करके उनको वंदना करके पूजा करके भगवान को छोड़ दिए। भगवान अभी अनेस अशेष धन रत्न मणि माला पहन करके आए, ब्रजवासियों से मिले, जो लोग सब किनारे में बैठे थे आए। अब जल बिल्कुल शुद्ध, अब हर प्रकार से निरापद है, ऐसे करके सदा के लिए काली अभी सधर को विदा कर दिए। उनको बीस ही तो खत्म हो चुका था, बीस था नहीं उसका अभी। ऐसे ऐसे उनका पैर में पद प्रहार किए कि कभी किसी को और काटेगा नहीं फटेगा नहीं, उन्होंने भद्रलोक बन गया, वो पूरा जेंटलमैन कर दिए उसको, और ऐसे करके बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं। यही तो है, भगवान किसी को पदाघात भी करे वो शुद्ध ही होगा। बिल्कुल शुद्ध किए कालिया को, उस जल को, उस स्थान को, परिवेश को सब शुद्धिकरण किए भगवान के लिए। शुद्धिकरण करके उनको विदा करके ब्रजवासियों को आनंद दे करके उस रात उसी जगह पर रहे, उस कदम किनारे उस रात बिता। शाम हो चुका था, बोले इतनी दूर क्या जाए, वहाँ किनारे रुके, अब आगे चल करके काल क्या करेंगे काल सुनेंगे, है ना नहीं।